हरे कृष्णा, आपका स्वागत है एक नई कड़ी में, एक मुलाकात कृष्ण भक्त के साथ। ये वीक हमारा काफी एक्साइटिंग रहा है। पहले हमने फ्राइडे को किशोर जानी जी से सीखा कि किस तरीके से अपनी गृहस्थ लाइफ में वो चार बच्चों को संभालते हुए भक्ति को भक्ति की अपनी लाइफ में एक अच्छी स्पेस बना रही हैं। कल हमने अमोघ लीला दास जी से पूछा कि किस तरीके से अपनी लाइफ को हम भक्ति से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं। और आज हमारे पास एक नया गेस्ट है, एक स्पेशल गेस्ट है जिससे हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। पर इससे पहले, अगर आपने फ्राइडे और कल का शो मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में हमारी प्लेलिस्ट है, आप ये दोनों शोज देख सकते हैं। आज के हमारे गेस्ट बहुत स्पेशल हैं क्योंकि इतने एक्सपीरियंस के साथ वो भक्ति में जुड़े हुए हैं और वह आज हम सबको एक बहुत बहुत स्पेशल अपनी लाइफ से एक प्रेरणा देने वाले हैं। तो आज के हमारे गेस्ट एक MBBS डॉक्टर हैं जो कि आज की तारीख में भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर। वो बहुत सारे चैनल्स जैसे कि स्टार प्लस, कलर, ETC और बहुत सारे चैनल्स के ऊपर आत्मा सीरियल को दे चुके हैं एंड वेरी सक्सेसफुल सीरीज। तो आज हम वेलकम करना चाहेंगे हमारे स्पेशल गेस्ट को, विश्वरूप दास जी को। सो विश्वरूप जी, वेलकम टू आवर शो। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस,
हरे कृष्णा।
सो वेलकम टू आवर शो एंड थैंक यू सो मच कि आज आप हमारे शो में आए। तो जितना इंस्पायरिंग टू नो अबाउट यू, तो आज हम अपने दर्शकों के लिए ये जानना चाहेंगे कि आप अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए कि आपका बचपन कैसा बीता, आपके परिवार कैसे थे और किस तरीके से आपकी परवरिश हुई, उसके बारे में कुछ।
मेरा जन्म जो है वो प्रभादेवी दादर में हुआ, रविंद्र नाट्य मंदिर के पास वर्ली में, और मैं प्रभादेवी में रहा और मैं मेरे घर में घर की 8वीं संतान हूँ, लास्ट। और मेरे बड़े भाई, बड़ी बहन जो है 16 साल से बड़ी है और बड़े भाई सबसे जो है वो 13 साल से बड़े हैं। तो हमारे घर में दो पीढ़ियां रही और मैं मराठी मीडियम में मेरी 10वीं पास की, तब मैं महाराष्ट्र में 16वां आया था मुंबई में और मेरा 9th रैंक था। उस समय तो मेरिट लिस्ट हुआ करती थी SSC बोर्ड की, पुणे बोर्ड, डिविजनल बोर्ड की। उसके बाद बचपन मेरा एक चौल में गुजरा और हम नरदुल्ला टैंक मैदान में क्रिकेट खेलते थे और पढ़ाई करते थे बहुत जोरदार। उसके बाद 11th और 12th मैंने रूपाल कॉलेज में किया साइंस में, और उसके बाद में मैं मेडिकल कॉलेज JJ हॉस्पिटल, ग्रैंड मेडिकल कॉलेज गया।
तो आपकी भक्ति में इंट्रोडक्शन किस तरीके से हुई, मतलब व्हेन डिड यू गेट इंट्रोड्यूस्ड टू भक्ति, आपका इंक्लिनेशन वहां पे कैसे हुआ?
वो हुआ ऐसे कि मुझे बचपन से ही IIT इंजीनियर बनने की मेरी तमन्ना थी। मैं दिन रात IIT की सांसें लेता था हमेशा, आई यूज्ड टू ब्रीद IIT डे एंड नाइट। और 12th में मैंने IIT में बॉम्बे में एडमिशन भी प्राप्त किया, लेकिन हमारी जो घर की स्थिति थी वो इतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसके वजह से एडमिशन मिलने के पश्चात मुझे छोड़कर मेडिकल में आना पड़ा, क्योंकि मेडिकल में तो मैं घर पर रह के पढ़ाई कर सकता था, IIT में हॉस्टल में रहने की आवश्यकता थी, अलग से पिताजी को 7 बच्चों को संभाल के मुझे अलग से भेजने की क्षमता नहीं थी। तो उस समय मैं बहुत दुखी हो गया कि इतनी दिन रात मेहनत करके यश प्राप्त करने बाद भी मुझे IIT में जाने को मौका नहीं मिला। तो मेरे मन में जीवन के बारे में बहुत प्रश्न आए कि ये जीवन क्या है, कर्म क्या होता है, डेस्टिनी क्या होती है और हम कहाँ होते हैं, हमारे प्रयास का उसमें क्या महत्व होता है और कौन तय करता है कि हमें जाना कहाँ है। तो इन सवालों को लेकर मैं समुद्र किनारे दादर चौपाटी पर बैठता था, कभी कभी रोता भी था और विचार करता था कि ये क्या है जीवन। बहुत थोड़ी विफलता भी आ गई थी मुझे। तो उस बीच मेरे क्लासमेट जो IIT जा सके उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैं उनको IIT में जाकर, मुंबई IIT में, पवई में जाकर मिलता था वीकेंड में। तो वहाँ पर बहुत सारे अच्छे भक्त थे जो MTech और BTech कर रहे थे, उन्होंने मुझे फिर समझाना शुरू किया। एक साल मैंने बहुत कड़ी बहस की उनके साथ, कड़ा संघर्ष, वेरी एग्रेसिव, और फिर एक साल के पश्चात मैं इसमें कन्विंस हो गया और फिर भक्ति में आया।
तो जब आप भक्ति में आए तो इसके दो पहलू होते हैं, एक तो आपकी पढ़ाई पे क्या इफेक्ट पड़ा, क्योंकि आप पहले से ही थोड़े हताश थे कि आप आईआईटी में नहीं जा पाए थे, अब जब आप भक्ति में आए तो आपकी पढ़ाई पे इसका क्या असर पड़ा? व्हाट डिड यू सी कि अब भक्ति में आने के वजह से आपकी पढ़ाई और अच्छी हो गई या आप ज्यादा कंप्लेसेंट हो गए, तो भक्ति ने आपकी पढ़ाई पे क्या इफेक्ट डाला?
मैं पहले फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बहुत दुखी था, मुझे इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में, क्योंकि मैं आईआईटी का ही ख्वाब देखा करता था। लेकिन आगे लगा कि जब भी ह्यूमन बॉडी, मनुष्य देह के विषय में पढ़ाई शुरू हुई तो इंटरेस्ट मेरा बढ़ा, और फिर जब मैं भगवान के नाम का जप करना आरंभ किया तो उस समय लोग, अभी हमारे कॉलेज की भाषा में क्या कहते हैं, टाइम पास करते थे, लोग चाय पीते थे, सिगरेट पीते थे, टीवी देखते थे, टेबल टेनिस खेलते थे, ऐसे बहुत समय बर्बाद करते थे। वो मेरा सब जो वेस्ट ऑफ टाइम है वो समाप्त हो गया, और मैं सुबह उठ के ही आधे घंटे जप करता था, फिर 6 घंटे पढ़ाई करता था, फिर आधे घंटे जप और लंच लेता था, उसके बाद फिर 4 घंटे पढ़ाई, फिर 4 माला जप करता था। उस तरह से मैं 2 घंटे दिन में 4 विभाग में जप करता था, और हमारे कॉलेज की भाषा में सारे टाइम पास समाप्त हो चुके थे। और मेरे, अभी मैं जब सोचता हूँ पीछे के बारे में, तो मेरी पढ़ाई पहले से अच्छी हुई मैं जप करना आरंभ करने के बाद, क्योंकि मैं वज्रासन करके मन को एकाग्र करके भगवान के नाम का जप करके फिर पढ़ाई करने बैठता था, और कॉलेज के लोग सब रात को जगते थे और सुबह सोते थे मैं 9-9:30 को सोकर सुबह 4 बजे उठकर जप करके पढ़ाई करता था, तो इसलिए मेरी स्मरण शक्ति भी अच्छी थी, अच्छी रही, और मेरी पढ़ाई भी अच्छी रही, जीवन पूरा आमूलाग्र परिवर्तन हो गया उसके अंदर। तो पढ़ाई में कुछ नुकसान नहीं हुआ, पढ़ाई अच्छी हुई और लाभ भी हुआ इस चीज का।
तो अब दूसरे पहलू पे आते हैं, जब आप भक्ति में आ गए, और जैसे कि आप अभी कंफर्म कर रहे हैं कि आपके जीवन के जो भी कॉलेज के टाइम पास होते हैं वो चले गए तो आपके दोस्तों का क्या रिएक्शन था?
हमारे घर के लोगों का,
आपके जो भी दोस्त थे जो आपके कॉलेज में जो फ्रेंड रहते थे, उनका क्या रिएक्शन?
दोस्त सोचते थे कि पागल हो गया ये पूरा, ये तो अच्छा था पहले, हमारे साथ में धमाल करता था, लेकिन अभी सब छोड़ दिया। तो कुछ लोग बुआ कहते थे, कुछ साधु कहते थे, कुछ संत कहते थे, ये दोस्तों की रिएक्शन थी, और कुछ चिढ़ाते थे, कुछ ताने मारते थे। लेकिन क्या था ना, मैं वो बचपन से मैं कसरत करता था, और कॉलेज में भी जिम में जाया करता था, 1.5 घंटे मैं मेहनत करता था, तो थोड़ा लोग भी डरते भी थे उस समय, तो कुछ कुछ लोगों को मैंने धमकियां भी दी थी उस समय, क्योंकि मैं बहुत तगड़े शरीर का था उस समय, और जिन्होंने ताने मारना शुरू किया उनको मैंने सबक सिखाया, जिन्होंने जो भी कुछ शंका कुशंका उत्पन्न की उनको मैंने प्रेम से समझाया, और बहुत लोगों को मैंने इसमें सम्मिलित कर लिया। मेरे हॉस्टल के रूम में भी प्रोग्राम हुआ करते थे, और मैं उनको कुछ संतों को बुलाकर बुधवार को शाम को 1-2 घंटे कमरे में सत्संग हुआ करता था, तो काफी हमारे विद्यार्थियों ने उसमें लाभ भाग लिया, और आज उसमें से कुछ विद्यार्थी जो थे वो भक्ति वेदांत अस्पताल के बड़े अधिकारी हैं, और बहुत जगह पर भी बिखरे हुए भी हैं, जो डॉक्टर सभी भक्ति में आए और उन्होंने अपने जीवन भी, वो बहुत सीनियर और बहुत वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी हैं।
तो आपके केस में आप साम दाम दंड वेद किसी से भी सबको मंत्र लेते थे, और आपने उनको अपने लिए फेवरेबल कर दिया, बट आमतौर पे ऐसा देखा जाता है कि जब भी हम भक्ति करते हैं तो हमें काफी पीयर प्रेशर आता है, तो इस पीयर प्रेशर में जैसे हमारे दोस्त हैं, हमारा परिवार है, तो आपको परिवार की तरफ से कोई प्रेशर आया कि भाई क्या कर रहे हो?
परिवार परिवार तो पहले तो मैं आपको एकदम दिल खोल के बता देता हूँ, मेरे हॉस्टल के कमरे में पूरे लड़कियों का चित्रपट हुआ करता था कोने कोने में। फिर एक दिन पिताजी एडमिट हो गए, और पिताजी फिर डिस्चार्ज होने के पहले हॉस्पिटल में मेरे कमरे में आए, देखा तो कोने कोने में, कण कण में भगवान के चित्रपट लगे हुए थे। तो बड़े वो पहले थे, जितना लड़कियों को चित्रपट देख के दुखी नहीं हुए थे, उतना कृष्ण के फोटो को देख के दुखी हुए इतनी सारी गीताएं रखी है, इतनी सारी मालाएं रखी है, लोगों को भी बांट रहा है, तो क्या मेरा लड़का अभी भाग जाएगा घर छोड़ के? फिर जो संघर्ष मेरे घर में शुरू हुआ वो बहुत ही क्या कहते हैं उसको, तीव्र था। मैं सबसे छोटा था, तो मेरे चार बड़े भाई, माता पिता, खास करके पिताजी बहुत नाराज थे, उन्होंने मुझे बहुत विरोध किया और घर में बहुत संघर्ष रहा। अरे ये तो जवानी का जोश है, दो दिन करेगा छोड़ देगा ऐसा, क्योंकि मैं ना पहले अंडे खाने के लिए बहुत घर में झगड़े करता था और सबके झगड़े करके बहुत अंडे खाया करता था। अरे तू क्या भक्ति करेगा और तू क्या छोड़ेगा सब कुछ। लेकिन 6 महीने गए, 1 साल गया, फिर धीरे धीरे उनको लगा कि भाई छोड़ने वाला नहीं है। तो काफी संघर्ष रहा, काफी मतलब हमारे कुछ दोस्त भी थे, उनके घर में तो बर्तनों की लड़ाई होती थी, बर्तन फेंका करते थे माता पिता और उनके ऊपर। उतना तो मेरे घर पे नहीं हुआ, लेकिन काफी संघर्ष रहा। मतलब मैं घर से निकाल दूंगा, तुम्हें यहाँ रहना नहीं है, दीक्षा लेंगे तो मैं तुम्हारा बिस्तर बाहर फेंक दूंगा, इस प्रकार की बातें घर में हुआ करती थी। लेकिन मैं एकदम शांत रूप से उनको कहा कि जिस दिन मैं दीक्षा लूंगा ना, तो आपको बिस्तर फेंकने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चला जाऊंगा। इस तरह से मैंने उसको हैंडल किया। फिर बाद में सब कुछ ठीक हो गया, क्योंकि जब पिताजी, मैं विद्यार्थी था तब बीमार पड़ गए, तो मैंने उनकी देखभाल की, जे जे अस्पताल में एडमिट हो गए थे। फिर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तो जीटी हॉस्पिटल में भी वो दोबारा स्ट्रोक से एडमिट हो गए थे, तब भी मैंने उनकी देखभाल की। तो फिर उनका, मेरी सेवा होने की वजह से मैंने जो देखभाल की उनकी, एक डॉक्टर के रूप से और एक पुत्र होने के नाते, वो उनका मन परिवर्तन होता गया धीरे धीरे धीरे। और बाद में क्या हुआ कि जब मैं पूरी तरह डॉक्टर बना और भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में आया, तो उनको, वो बहुत वृद्ध हो चुके थे, उनको बहुत ज्यादा टीबी हो गई थी, तो मैंने 6 महीने उनकी शुश्रूषा की, देखभाल की, तो उनका पूरा हृदय परिवर्तन हो गया। उस समय पूरा जो गुस्से में थे ना, वो एकदम ऐसे धन्यवाद की भावना में आ गए। ये पूरा 25 साल का लंबा यात्रा है जिसमें हृदय परिवर्तन सबके हुए परिवार में।
सो दर्शकों, ये चीज बहुत ही ध्यान देने वाली है कि हमारे जीवन में काफी कठिनाइयां आ सकती हैं, हमारे परिवार की तरफ से, हमारे दोस्त की तरफ से, कहीं से भी, बट अगर हम प्रेम और सेवा से उनके साथ डील करेंगे तो विजय आखिरकार हमारी ही होगी। हम जितना भी गुस्सा कर लें, जितना भी चिढ़ लें, बट अंततः जब आप प्रेम और सेवा से किसी के साथ भी डील करते हैं तो आपकी लास्ट में बात बनी जाती है, और इसका लाइव एग्जाम्पल है आज हमारे पास विश्वरूप जी। तो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे।
एक बात मैं कहना चाहूंगा इसमें कि उनको बहुत प्रेम था मेरे ऊपर, उनको लग रहा था कि अगर ये भक्त बनेगा तो सब कुछ व्यवसाय छोड़ देगा और सन्यासी बनेगा, भाग जाएगा। उनको पता नहीं था कि एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैंने विवाह किया और मैंने व्यवसाय किया, सब जनता की सेवा कर रहा हूँ, तो उनको फिर अभिमान होने लगा मेरे ऊपर। तो माता पिता प्रेम करते हैं, अज्ञान की वजह से फिर वो विरोध करते हैं, लेकिन जब उनको ज्ञान होता है कि क्या हो रहा है, फिर वो उनका मन परिवर्तन होता है। लेकिन आपने जैसे ठीक कहा कि प्रेम और सेवा जो है ना, उसी से हृदय परिवर्तन होता है, और वो करना जरूरी है।
तो अब जब आपकी जर्नी आगे बढ़ी, तो आपने इसके बाद जब आपकी पढ़ाई पूरी हो गई, तो आपने कहीं जॉब किया या किस तरीके से आपने अपना करियर आगे बढ़ाया, उसके बारे में कुछ बताइए।
मेरा एक परम भाग्य रहा कि मैं, जैसे ही मैंने MBBS पूरा किया और उसी इंटर्नशिप में मेरा विवाह हुआ, तो हम दोनों पति पत्नी सीधे मंदिर में रहने चले गए। और मैं बहुत साल मंदिर में रहा, और मंदिर में रहकर मैंने गांव-गांव में, झोपड़पट्टियों में मेडिकल कैंप्स लगाए, हरे कृष्णा मेडिकल एसोसिएशन का स्थापना किया। उससे हम लोग आदिवासी गांव में जाने लगे। मैं करीब करीब MBBS मैंने 85 में पूरा किया, 86 में इंटर्नशिप पूरी की, और 86 से 93 तक मैं 7 साल मंदिर में रहा, और मंदिर से ही मैं पालघर तक आदिवासी गांव में मेडिकल कैंप लगाता रहा, हर हफ्ते के एंड में गांव में, और सोमवार से शुक्रवार मुंबई के झोपड़पट्टियों में मैं 5 मेडिकल कैंप लगाया करता था, और ये 7 साल चलता रहा। फिर हम मीरा रोड आए।
तो ये मेडिकल कैंप्स जो आप लगाते थे, ये मतलब इसकी प्रेरणा आपको कहां से आई कि हमें सेवा करनी चाहिए, हमें इन लोग को ठीक करना चाहिए हमारे नॉलेज से, तो ये प्रेरणा आप में कहां से?
इसका श्रेय जो है वो हमारे एक वरिष्ठ गुरु भाई हैं, उनका नाम है दामोदर पंडित जी। हम लोग उस समय जुहू मंदिर जाया करते थे, और सब लोग हमारे डॉक्टर सब जो JJ हॉस्पिटल के थे, जो नायर हॉस्पिटल के थे, वो सब वहां रविवार को मिला करते थे हम लोग। तो दामोदर पंडित जी, प्रभु जी ने हमारे लिए बहुत प्रेरणा दी थी, बहुत मार्गदर्शन भी किया था। जब हम MBBS पूरा कर चुके, तो उन्होंने कहा कि आप MBBS पूरा हो गए, तो अभी आप लोगों के लिए कुछ कीजिए। तो कुछ हमको पता नहीं था कि क्या, जस्ट पास हुए थे, विद्यार्थी थे, तो उन्होंने हमको प्रेरणा दिया और कहा कि हम व्हीकल अरेंज करेंगे। फिर हमारे एक जो मेरे क्लासमेट हैं जो अभी भक्ति वेदांत अस्पताल के संचालक हैं, डायरेक्टर, वो गांव से हैं, आदिवासी गांव से, तो उनके ही गांव से हमने फिर ये मेडिकल सेवा आरंभ की। हर हफ्ते फिर वहां से और 4-5 गांव में आरंभ किया। सबसे पहले हम मल्टी डायग्नोस्टिक मेडिकल कैंप लगाया करते थे, फिजिशियन, पीडियाट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, ये 5 ब्रांच में। फिर उसके बाद में हमने आंखों का कैंप 1990 में लगाना शुरू किया, क्योंकि आंखों के भी डॉक्टर्स हमारे यहाँ पर ज्वाइन हो गए और 25-25 समर ऑपरेशन हम लोग पालघर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करते थे। उसके बाद में हमने यूपी में वृंदावन में राधा रानी के गांव में पहला कैंप किया 1992 में। उसमें हमने 185 ऑपरेशन किए, जो हमारे लिए उस समय बहुत बड़े थे। और फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए अभी हम बरसाने में भी 1100-1200 ऑपरेशन हर कैंप में करते हैं हर साल, और साल में 4000 ऑपरेशन करते हैं। तो ये गांव के कैंप चलते रहे लगातार। फिर बीच में भक्ति वेदांत अस्पताल आया, फिर उसके तरफ से भी गांव में कैंप चलते रहे। और बरसाना के आंखों के कैंप के का विस्तार काफी हुआ। फिर वहां पर छोटा अस्पताल बनाया जो अभी भी चल रहा है। इस तरह से सामाजिक कार्य जो है उसमें हम लोग 3 चीजें करते थे। एक मेडिकल स्पेशलिटी केयर देते थे सर्जिकल के साथ, और अन्न प्रसाद भगवान का जो अभी हमारा अन्नामृत के रूप में प्रसिद्ध है हमारे इस्कॉन में, वो हम शुरुआत में बांटा करते थे सभी लोग। डॉक्टर लोग खुद अपने हाथ से बनाते थे। मैंने भी कई 10 साल तक करीब करीब 200 से लेकर 500 लोगों का भोजन अपने हाथ से बनाया है शनिवार के दिन। और फिर हम लोगों को भोजन खिलाते थे, कीर्तन करते थे, प्रवचन करते थे। फिर रविवार के दिन हम लोग कैंप करते थे। झोपड़पट्टियों में भी हम लोग पहले कीर्तन करते थे, लोगों को बुलाते थे, फिर वैद्यकीय सेवा करते थे, फिर प्रसाद बांटते थे और फिर आते थे। ये हमारा वैसा ही फॉर्मूला रहा है।
तो मुझे ये बहुत इंटरेस्ट है जानने में कि जनरली जब एक डॉक्टर MBBS करता है, क्योंकि उसने इतनी मेहनत की होती है, इतना खर्चा किया होता है पढ़ाई करने में, तो सबकी मोटिवेशन या सबका एस्पिरेशन यही रहता है कि चलो अब पैसे कमाएंगे। तो आपका ये एस्पिरेशन क्यों नहीं था? क्योंकि आपने भी MBBS किया, आप कहीं पे भी एक अच्छे हॉस्पिटल में या कहीं पे भी एक अच्छा क्लिनिक खोल के अच्छे से आप पैसे कमा सकते थे। तो आपने ये सेवा भाव का, इसका जो कि पैसे कमाने का ऑपोजिट है, आपने ये सेवा भाव का एटीट्यूड क्यों था? और पैसे कमाने का जैसे एक नॉर्मल तौर पे देखा जाता है, मैं नहीं कहता कि सब डॉक्टर्स ऐसे होते हैं, बट नॉर्मल तौर पे ऐसा एस्पिरेशन होता है जो कि चाहते हैं कि हम अब डॉक्टर बन गए तो हम बहुत पैसे कमाएंगे, तो ये कभी आपके मन में नहीं था? और नहीं था तो क्यों नहीं था?
शुरुआत में था, जब मैं डॉक्टरी करने के लिए गया था MBBS करने के लिए, तब तो यही था कि मेरा भाई भी डॉक्टर है, मैं भी दवाखाना खोलूंगा, बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा, फेमस डॉक्टर बनूंगा, सैकड़ों पेशेंट मेरे पास आएंगे। और मैंने बहुत कोशिश भी की थी, लेकिन ना धन के अभाव की वजह से, मेरे पिताजी ने बहुत कष्ट उठाया, बहुत मेहनत की हमें बड़ा करने के लिए, और हमारे सातों हमारे जो भाई बहन हैं वो सब अच्छे पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर्स भी हैं उसके अंदर। लेकिन उनका ये कहना था कि मैं डॉक्टर बनाऊंगा, आपको उसके आगे का आपको देखना है, क्योंकि मैं सक्षम नहीं उसके आगे करने के लिए। तो फिर MBBS होने के बाद में मैं अपना दवाखाना प्रस्थापित नहीं कर सका धन के अभाव की वजह से। और पहले से भक्ति में तो आ ही गया था, तो मंदिर में रहने चला गया, तो वहां पर मैं फिर मेडिकल कैंप में ही लग गया, सेवा करने में लग गया। और पता नहीं गुरुजी की ऐसी कृपा थी, मैं तो बहुत सोचता हूँ उसके बारे में कि कैसा मेरा मन यहाँ पर लगा। वो मैं उसका पूरा श्रेय ना मेरे गुरु महाराज की कृपा को दूंगा। उन्होंने जो प्रेरणा दी थी कि आप लोग अपना अपना व्यवसाय बाहर कर सकते हो और बहुत धनी और बड़े यशस्वी डॉक्टर्स बन सकते हो, लेकिन साथ में रहकर कुछ करोगे तो इतिहास के पन्नों में आपका नाम होगा। ये जो वाक्य कहा था ना, बहुत ही हृदय के अंदर कोने में चला गया। अगर आप साथ रहकर सेवा करोगे तो इतिहास के पन्नों पर आपका नाम होगा। और ये अभी 35 साल हो गए उसको, अभी मैं उसको अनुभव कर रहा हूं कि इतना बड़ा इतिहास भक्ति वेदांत अस्पताल का जो रचा गया, उसमें हम लोग ही 4-5 लोग थे जिन्होंने ये शुरुआत की थी। तो पैसे की लालच तो किसी को नहीं होती है, सबको होती है, हमें भी है, लेकिन जब उससे उच्च आनंद प्राप्त होता है तो फिर पैसा का लालच जो है ना वो कमजोर हो जाती है। व्यक्ति पैसे के लालच में कब तक रहता है? जब तक पैसा उसके सामने है और आगे कुछ नहीं है। लेकिन पैसे से भी श्रेष्ठ आनंद उसको और मिलने लगा तो पैसे का आनंद जो है ना वो कम होता जाता है। बच्चे कैसा होता है, गंदा खिलौना मुंह में डाल के डायरिया होता है उसको, उसको अगर हाथ से खिलौना निकालना है तो आपको एक अच्छा खिलौना देना पड़ेगा जो आकर्षक है, तब वो तुरंत वो गंदा खिलौना छोड़ देगा अपने आप, कोई कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। वैसे ही ये जो सेवा का भक्ति का श्रेष्ठ आनंद प्राप्त हुआ उसके सामने फिर सब कुछ अच्छा नहीं लगा, और भगवान की दया से बाग में पैसे भी आए, घर गृहस्थी भी अच्छी चल रही है, कोई हम लोग ऐसे कष्ट में नहीं है, समाधानकारक गृहस्थी जीवन हम जी रहे हैं। आप मुझे देखकर भी देख समझ सकते हैं कि मैं खाते पीते घर का हूँ और आनंदी हूँ, खुश हूँ, कोई मेरे जीवन में कमी नहीं है, लेकिन संतुष्ट हूँ। जो भी है, करोड़पति नहीं बने लेकिन आनंदी बने, इतना निश्चित है।
नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने जीवन में आनंद में रहें। और आपने बहुत अच्छा कहा कि जब हमें कोई हायर टेस्ट मिल जाता है, कोई अच्छा स्वाद मिल जाता है, तो हम जो लोअर टेस्ट रहता है उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, जैसे कि आपने बताया कि भक्ति वेदांत हॉस्पिटल आप लोगों ने स्थापना की उसकी, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि उसकी प्रेरणा आपको कैसे आई, और आज ये इतना बड़ा हॉस्पिटल है। मैं दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा कि मीरा रोड में, जो कि मुंबई के पास है, ऑलमोस्ट मुंबई में ही ऐसा कह लीजिए, यहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल, जो कि एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इसके बारे में ज्यादा विश्वरूप जी बताएंगे हमें, बट ये बहुत सालों से बहुत अच्छा हॉस्पिटल माना जाता है और बहुत सारे अवार्ड जीत चुका है। और आज हमारा सौभाग्य है कि उनके एक फाउंडर मेंबर हमारे साथ हैं, और आज ये हमें बताएंगे कि ये कैसे जर्नी शुरू हुई जो कि आज इतने बड़े हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो चुकी है। तो प्लीज आप इसके बारे में कुछ बताइए।
जैसे मैंने पहले कहा कि 10 साल तक हमने गांव-गांव में जाकर, हमारे पास कुछ पैसे नहीं थे, कुछ साधन नहीं था, लेकिन गांव-गांव में जाकर हमने वैद्य की सेवा की, आदिवासियों के लिए बहुत सारी मेडिकल सेवा की। उसके बाद में हमको एक अनुभव लगा कि इनको अगर फॉलोअप करना है, किसी को एडमिशन करना है, किसी को सर्जरी करनी है बड़ी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, तो अपना एक बेस होना चाहिए। तो तब वो 1992 में वो खोज शुरू हुई कि कुछ जगह होनी चाहिए। तो हमने ना अंधेरी से लेकर बोईसर, जो पालघर के भी आगे है, गुजरात में पहुंचता है वो, वहां तक जगह ढूंढ ली बहुत थाल तक। और फिर गुरु महाराज एक बार मीरा रोड में उतरे, और मीरा रोड की स्वच्छ हवा और उभरता हुआ नया नगर, सस्ती जगह और नया पॉपुलेशन, ये देखकर उनको अच्छा लगा बहुत। उन्होंने कहा कि इसमें मीराबाई का नाम भी है, मीरा रोड, तो ये हर तरह से मुझे अनुकूलता दिखा रहा है। तो हम फिर वहां पर ना तो एक फ्लैट लिए और हमारा आउट पेशेंट डिपार्टमेंट शुरू किया, दूसरा फ्लैट लिया, फिर एक्सरे और पैथोलॉजी शुरू किया, तीसरा फ्लैट लिया, और फिर ऑपरेशन थिएटर और 14 बेड्स हमने शुरू किए। तो एक छोटा सा नर्सिंग होम भक्ति वेदांता, उस समय श्री चैतन्य पॉलीक्लिनिक और नर्सिंग होम के नाम से था। फिर वो कुछ ही सालों में उसमें इतनी भीड़ हो गई कि लोगों को बिल्डिंग के कंपाउंड में रहने की जगह नहीं थी, खड़े रहने की जगह नहीं थी, क्योंकि हम लोग बाहर के लोगों को, लोग जब 100 रुपये चार्ज करते थे पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर MD, हमारे MD डॉक्टर 30 रुपये चार्ज करते थे। तो शाम को 3 से लेकर रात को 9 बजे तक 350 मरीज वहां पर आया करते थे, और बिल्डिंग के कंपाउंड में खड़े रहते थे। तब हमको ये अनुभूति हुई कि अभी ये जगह कम पड़ेगी, हमें बड़ा अस्पताल होना चाहिए। तो उस समय हमारे 10 और 12 साल की जो सेवा हुई उसका पूरा रिकॉर्ड था हमारे पास। वो देखकर हमारे एक गुरु भाई हैं, वो मिस्टर दालमिया जी के कंपनी में बड़े पद पर काम करते थे, उन्होंने 300-400 बिल्डिंग की सृष्टि कॉम्प्लेक्स बनाई थी, अभी भी है मीरा रोड में, बहुत सुंदर कॉम्प्लेक्स है, उसमें हॉस्पिटल की जगह रखी थी। उनके पास जगह थी लेकिन डॉक्टर नहीं थे, हमारे पास डॉक्टर थे लेकिन जगह नहीं थी, साधन नहीं था। तो उन्होंने हमारी केस जो है उनके सामने रखी, 1 साल तक सलाह मशवरा चलता रहा, विचार परामर्श, और 1 साल के पश्चात निरंजन लाल दालमिया और उनके सुपुत्र शिव कुमार दालमिया, उन्होंने बड़ी ही दया से इस कार्य के लिए उनकी 2.25 एकड़ की जगह, जो आज प्राइम लोकेशन पे है, उस समय जंगल में थी 1992 के समय, तो वो हमको दे दी, और फिर हमने उसको बिल्डिंग बनाना शुरू किया। जिन लोगों ने हमारे कैंप्स को पेट्रंस ऑफ पुअर इस स्कीम में हेल्प किया था, मराठी में था उसका नाम गरीबांसा कैवारी, यानी हर महीने में 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये, 501 रुपये, और सबसे ज्यादा 1501 रुपये जो लोग दिया करते थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे। उनमें से 26 पेट्रंस ऑफ पुअर इन्होंने एकत्र होकर 15 करोड़ रुपए दिए हमको, और 15 करोड़ रुपए में वो ग्राउंड प्लस 5 मंजिल का, जो 6 मंजिल का अस्पताल जो है वो तैयार हो गया। और शुरू में हमने फिर 10 बेड्स, 20 बेड्स, 30 बेड्स के रूप में शुरू किए और हमारे अंदर सभी प्रकार की विशेषताएं उपलब्ध थी। भगवान की ऐसी दया रही कि MBBS होने के बाद में जिन जिन लोगों ने जो जो ब्रांच चाही वो ब्रांच उनको सबको प्राप्त हो गई। हमने प्लान किया था आप बनना है बाल रोग तज्ञ, आप बनना है जनरल सर्जन, आप बनना है ऑर्थोपेडिक सर्जन, आप बनना है गायनेकोलॉजिस्ट और क्या कहें आपको, सबको वही ब्रांचेस प्राप्त हुई अद्भुत तरीके से। तो हमारे पास एक पूरी कंप्लीट टीम थी, तो वो टीम के साथ में जो काम शुरू हुआ, जो पहले 93 में शुरू हुआ छोटे नर्सिंग होम के रूप में, फिर 98 में बड़े अस्पताल के रूप में, वो आज तक धुआंधार चल रहा है। अभी हमारे 13 अस्पताल है टोटल, मीरा रोड में 4 हैं और 2 उत्तर प्रदेश वृंदावन धाम में 2 हैं और बाकी सारे थाने जिला में हैं।
तो दर्शकों ये हमारे लिए बहुत समझने की जरूरत है कि एक छोटी सी सेवा और भक्ति से शुरू की हुई मुहिम कितनी सक्सेसफुल बन सकती है भगवान की दया से और भक्ति की शक्ति से। तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है एक भक्त के लिए, अगर उसके मन में एक दृढ़ विश्वास हो और भक्ति के साथ वो लगा रहे तो कुछ भी पॉसिबल है। और आज इसका एग्जाम्पल हम डायरेक्टली सुन रहे हैं इतनी बड़ी स्टोरी में, जो एक नॉर्मल कैंप से शुरू हुआ था, जो एक नॉर्मल सेवा से शुरू हुआ था, वो आज एक बहुत बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन चुका है। तो हम आगे बढ़ना चाहेंगे, तो आज हम ये जानना चाहेंगे कि आज आप इस हॉस्पिटल में, जैसे कि मैंने सुना है कि आप स्पिरिचुअल केयर डिपार्टमेंट को लीड करते हैं, तो आप इसके बारे में कुछ बताइए।
इसके पीछे थोड़ा इतिहास बताना भी जरूरी है कि जब हमने जी, जैसे मैंने बताया मेडिकल कैंप करते तभी भी हम लोग कीर्तन करते थे, प्रवचन करते थे, प्रसाद लोगों को पेट भर के खिलाते थे, फुल्ली क्या कहते हैं संपूर्ण अन्न खिचड़ी खिलाते थे, उसके अंदर हर प्रकार के व्यंजन हुआ करते थे। फिर जब हमने पॉलीक्लिनिक शुरू किया तो उसमें भी हमने पूरे समय पर भगवान के नाम का कीर्तन चलता था छोटे वॉल्यूम में, और भगवत गीता के ऊपर हर ट्यूसडे को डॉक्टरों की तरफ से एक प्रवचन हुआ करता था पीछे टाइल फैक्ट्री हॉल में, और हमारे पेशेंट लोग वहां पर आते थे सुनते थे। तो आध्यात्मिकता ये हमारे हर शिविर में और हर छोटे छोटे प्रोजेक्ट में रही है और उसी को हमने आगे बढ़ाया भक्ति वेदांत में। अभी भी वहां पर 250 स्पीकर पे कीर्तन कांस्टेंट चलता है अस्पताल में, लोगों को केवल प्रसाद हम देते हैं, यानी लैक्टो वेजिटेरियन साइंटिफिक डाइट, सैंक्टिफाइड डाइट भगवान को अर्पण करके प्रसाद के रूप में ही सारे 14 डाइट्स लोगों को हम देते हैं। वहाँ कभी भी मांस और कोई भी नशा किसी भी चीज़ का वहाँ पर प्रादुर्भाव नहीं है। तो ये आध्यात्मिकता का विचार तो शुरू से ही था, अस्पताल बनाएंगे तो भगवान के अधिष्ठान के साथ बनाएंगे, भगवान के विचार के साथ बनाएंगे और लोगों को वैद्यकीय सेवा के माध्यम से भगवान का परिचय कराएंगे, प्रेरणा देंगे उनको सच्चे दिल की प्रामाणिक सेवा करते हुए, कोई भी चीटिंग ना करते हुए उनको एक प्रामाणिक सेवा देंगे, जो जरूरी है उतना ही करेंगे। और साथ साथ में जो डॉक्टर्स हैं, जो तिलकधारी मेरे जैसे हैं, वो तिलकधारी बैठेंगे और इलाज करेंगे लोगों का दिल से और उनको भगवान का परिचय देंगे। इसी से उद्गम हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ स्पिरिचुअल केयर का। और शुरू शुरू में ये कैसे करना है हमको खुद को भी पता नहीं था। हमारे गुरुदेव परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज इस अस्पताल के पूरी संकल्पना के शुरू से ही प्रेरणा स्रोत रहे हैं और वो हर कदम पे हमारे साथ थे, कैंप में भी हमारे साथ में दूर दूर तक वो गांव गांव में आए हैं, प्रवचन किए उन्होंने, फिर इस अस्पताल के जगह की खोज में भी उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है, उन्होंने इसको तय किया है और अस्पताल के हर एक कदम पर हर एक निर्णय में उनका सहयोग रहा है। इस नाम का भी जो नामकरण किया उसमें भी उनका ही सहयोग है। तो उनकी प्रेरणा से ये आध्यात्मिक विभाग डिपार्टमेंट ऑफ स्पिरिचुअल केयर इसका आरंभ हुआ 1999 में, और वो तब मैं और हमारे डॉक्टर संखे संचालक दोनों मिलकर काम करते थे। फिर डॉक्टर संखे अस्पताल के संचालक का जिम्मेदारी उन्होंने स्वीकार कर ली, उसके बाद मैंने पूरे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी स्पिरिचुअल केयर डिपार्टमेंट की 99 में संभाली। और उसके बाद में बहुत सारे कार्यक्रम मरीजों के लिए और स्टाफ लोगों के लिए, डॉक्टरों के लिए, आम जनता के लिए, हमारे वेंडर्स के लिए, हर प्रकार की सेवा, उसको हम कहते हैं गर्भाशय से कब्र तक यानी स्मशान तक, जन्म से लेकर अंत तक हमारी सेवा, वूम टू टूम ऐसा हमने उसको नाम दिया है कि कि जन्म से लेकर गर्भाधान से लेकर अंतिम संस्कार तक हमारी आध्यात्मिक देखभाल हमारे मरीजों को मिलनी चाहिए, यानी कि बच्चों को मिलनी चाहिए, आदमियों को, औरतों को, बूढ़ों को, और जिनको मरणासन्न अवस्था में जो है उनको अंतिम स्थिति की बीमारी हो गई है, असाध्य बीमारी हो गई है, मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, इन सभी प्रकार के लोगों को जो आईसीयू में हैं, जनरल वार्ड में हैं, ओपीडी में आते हैं, हर प्रकार के मरीजों को, हर प्रकार के रोगों के मरीजों को हर अवस्था में आध्यात्मिकता का लाभ देने की संपूर्ण योजना हमने बनाई हुई है, ताकि कोई भी व्यक्ति हमारे आध्यात्मिक देखभाल के बिना जाए नहीं। नोगा एसपीएम, नो वन गोज अवे विदाउट स्पिरिचुअल मैसेज, ये हमने एक स्कीम बनाई। हर एक व्यक्ति को भक्ति विधान में प्रवेश करते ही आध्यात्मिकता का स्पर्श होना चाहिए, उसके जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है, वो भी वैद्यकीय सेवा के माध्यम से।
तो मैं आगे आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो आध्यात्मिकता होती है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज होती है, इससे लोगों को क्या असर पड़ता है उनके ऊपर? और ये नॉर्मल जैसे हॉस्पिटल में देखेंगे तो एक पेशेंट, और बाहर देखेंगे तो एक आम इंसान, तो उस पे इनका क्या इफेक्ट पड़ता है, और ये इस चीज को अपना कैसे सकते हैं? क्योंकि आजकल कैसा रहता है कि जनरली जब भी कोई स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोचता है, भक्ति के बारे में सोचता है, तो उनके मन में एक ख्याल आता है कि ये चीजें सब बुढ़ापे के लिए हैं, ये चीजें सब ऐसे टाइम के लिए जब हमारे पास बहुत टाइम रहेगा, अब हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हमें अपना घर चलाना है। इन सब चीजों के अंदर आम इंसान की पूरी जिंदगी बीत जाती है, और इस विचारधारा के साथ कि भक्ति सिर्फ बुढ़ापे में ही करूंगा, वो भक्ति भी नहीं कर पाते। तो इन चीजों को मैनेज कैसे किया जाए, और भक्ति को अपनी लाइफ में एक इम्पोर्टेंस कैसे दी जाए, क्योंकि आप ये हॉस्पिटल में भी करते हैं और आम लोगों के लिए भी करते हैं, तो आप इसके बारे में कुछ बताइए कि एक आम इंसान स्पिरिचुअलिटी, भक्ति को अपनी लाइफ में एक स्पेशल जगह कैसे दे सकता है।
देखिए, सब लोग इस विश्व में दुखी हैं, बीमारी एक बड़ा एक कारण है दुख का, लेकिन बाकी भी जीवन में बहुत संघर्ष हैं, और हर व्यक्ति अपना अपना संघर्ष की लड़ाई करते रहता है, और उसको पता नहीं चलता है कि इसको संघर्ष को बंद कैसे करें, रोके, और सुख की प्राप्ति कैसे करें। लेकिन जितना हम लोग भौतिक दुनिया में भौतिकता के आधार पर, भौतिकता के स्तर पर अपना कार्य करते रहेंगे, ये दुखों से जूझते ही रहेंगे। और वो व्यक्ति जब बाहर जूझते रहता है और बीमार होकर जब अस्पताल में आता है, तो उसकी जो जिजीविषा है, उसकी जो क्या कहते हैं उसको, अंदर की जो प्रश्नोत्तर करने की प्रवृत्ति है, चिकित्सा प्रवृत्ति है, उसकी जो मुमुक्षु प्रवृत्ति है, उसकी जो खोज है, वो जरा तीव्र हो जाती है। व्हाई आई एम हियर, मैं इधर क्यों हूँ, बीमार क्यों पड़ा हूँ, तो उस समय अब राइट टाइम है वो। जब आदमी दर्द में होता है ना, तब उसको प्रेम से देखभाल मिलती है पहले नंबर वन, उसके बाद में प्रेम से पूछताछ होती है, उसके प्रश्नों का उत्तर मिलता है कि ऐसे क्यों हो रहा है, मैं बार बार जीवन में ठोकरें क्यों खा रहा हूँ, सब कुछ यशस्वी होने के पश्चात भी दुखी क्यों हूँ, मैं दुखों को टालने क्यों नहीं पाता हूँ, दुख कैसे आता है, ऐसे सबको प्रश्न होता है। लेकिन बिस्तर पर एक बार आने के बाद में उसकी व्यस्तता कम हो जाती है। कितना भी बड़ा सीईओ होगा, उसके मिनट के मिनट व्यस्त होगा, लेकिन जब अस्पताल में भर्ती होता है ना, तो वो फ्री रहता है, तो उस समय उसको प्रेम से देखभाल मिल जाए पहले मेडिकल, उसके बाद स्पिरिचुअल केयर मिलेगी, तो उसके प्रश्नों का उत्तर मिल सकता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे सारे दुख दर्द जो है वो हमारे कर्मों की वजह से आते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं, अच्छे कर्म के सुख मिलते हैं, तो बुरे कर्म के दुख मिलते हैं, पिछले जन्म के, इस जन्म के सारे संचित एकत्र होने के पश्चात ये दुखों का और सुखों का सिलसिला चलते रहता है। तो इनको अगर बंद करना है या तो कैंसिल करना है, तो एक प्रक्रिया है, उसको आध्यात्मिकता कहते हैं, और वो आध्यात्मिकता अपनाने से फिर हमको ये दुख क्यों आते हैं इसका कारण समझ में आता है। और फिर जब हम ये भगवान के नाम का जप शुरू करते हैं, तो तत्क्षण आनंद का अनुभव शुरू होता है। ये मैंने मेरे जीवन में अनुभव किया है, और जितने मरीजों को इसके बारे में परिचय कराया है, उन्होंने भी तत्क्षण सुख का अनुभव किया है, जिसकी वो हमेशा खोज में रहा करते थे। और जब ये प्रक्रिया अपनाना शुरू कर देते हैं, जीवन पद्धति चेंज करना शुरू कर देते हैं, तो वो अनुभव उनको खुद प्राप्त होता है। जैसे हम क्या कहेंगे, अगर मधु की बोतल बाहर से उसका वर्णन करते रहेंगे कितना मीठा है, तो कभी समझेगा नहीं आप, उसको ढक्कन खोल के ना एक बार चाटना होगा, तो मधु की मिठास आपको पता चलेगी। उसी तरह से पहले तो बताते हैं उनको उसके बारे में, फिर उनसे करवाते हैं, उनको मार्गदर्शन करते हैं, अस्पताल में भी करते हैं, और डिस्चार्ज होने के बाद भी उनको बुलाते हैं, और धीरे धीरे उनको इसके बारे में बताते हैं। तो ये फिर रुचि लेने लगते हैं, उसका अनुभव प्राप्त करते हैं।
तो इससे मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि जनरली जब हम देखते हैं कि दुनिया में हमें दो तरह के लोग मिलते हैं, एक होते हैं कि जो बहुत अच्छे होते हैं, पायस लोग होते हैं, हमेशा अच्छा करते हैं, और एक होते हैं जो जनरली इतने पायस नहीं होते। जब हमें दुनिया में ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं कि जो पायस नहीं है, अच्छे नहीं है, उनके साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो हम बोलते हैं कि चलो ही डिजर्व्स इट। बट हमें ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जो कि लोग बहुत अच्छे पायस होते हैं, जो कि अच्छे से हर चीज करते हैं, उनके साथ भी बहुत बुरा होता है। आप कह सकते हैं कि शारीरिक रूप से बुरा होता है या लाइफ में बहुत बुरा होता है। तो इससे हमारा एक विश्वास बन जाता है कि भाई इतना करके देख लिया, कुछ हुआ नहीं, इससे अच्छा तो मैं अपनी लाइफ इंजॉय करके जी लेता, कम से कम जो उसकी वजह से रेस्ट्रिक्शन आ रही थी वो तो नहीं आती। तो इस बारे में आपका क्या सुझाव है, क्योंकि ये एक बहुत प्रीडोमिनेंट थॉट हो गया है लोगों के मन में कि यार जब सब करके भी हमें सफर ही करना है तो फिर एक मजे कर लेते हैं लाइफ में।
हमारा जो जीवन है ना, वो आज जो हमको दिख रहा है, जो आज हम जो स्थिति में है, सुख या दुख की, वो हमारा जो संचित है, जो हमने पहले से लेकर आए हैं, और आज जो काम कर रहे हैं उसका मिलाप है, उसके मिलाप के अनुसार हमको सुख दुख का अनुभव होता है। ये समझना बहुत जरूरी है। हम लोग कभी भी किसी की वजह से सफर नहीं होते हैं। हमारा जो दुख होता है ना, वो हमारे ही कर्मों की वजह से होता है, और जो सुख मिलता है वो भी हमारे कर्मों से मिलता है। कुछ पिछले कर्म है, कुछ इस जन्म के कर्म है। और रही बात इतना सब करने के बाद में दुखी भोगना है, तो देखिए जब आदमी जेल में जाता है ना, प्रिजन हाउस में, तो वहां पर पत्थर ही तोड़ने पड़ते हैं। और जेल में क्यों जाते हैं, वहां पर कुछ गुनाह करते हैं तो जेल में जाते हैं, और जेल में जाने के बाद तो पत्थर तोड़ने का दुख का ही काम होता है। वैसे ही हम सब लोग दुर्ग में हैं, यानी एक प्रकार के जेल में हैं इस भौतिक विश्व में। जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा, इसके जेल में हम लोग फंसे हुए हैं, और वो जेल में हमको दुखी मिलने वाला है। हाँ, माम उपेत्य तु कौन्ते ये दुखालयम अशाश्वतम। ये जगत का निर्माण किया ना, प्रोडक्शन जिसने किया है, वो बता रहा है कि इस दुख में, इस दुनिया में दुख के अलावा कोई और गुंजाइश नहीं है। बाइबल में भी यीशु ख्रिस्त ये बताते हैं, इस दुख, इस अगर दुनिया में सुखी होना है तो इस दुनिया में सुखी होने का प्रयास करना पहले छोड़ दो, क्योंकि सुख की कोई गुंजाइश भगवान ने, मैन्युफैक्चरर ने इसमें की नहीं है। और अगर कोई सुख है तो केवल भगवान के संबंध में किए हुए कार्यों में ही है, बाकी सारे कार्यों में, अपने अच्छे कार्य जिसको कहते हैं, पुण्य कार्य में भी है, उसका भी आगे परिणाम जन्म मृत्यु जरा व्याधि में होता है। हम लोग धनी होंगे, सुंदर होंगे, अधिकारी यशस्वी होंगे, लेकिन जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा, इसको हम टाल नहीं सकते हैं। यह भौतिक दुनिया का स्थायी भाव है। कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड इज बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज एंड डेथ। तो पहले ये समझ में आना चाहिए कि व्हाई आई एम अनहैप्पी, मैं दुखी क्यों हूं, और सुखी भी हो तो क्यों हूं, और सुख भी चंचल क्यों है, और दुख भी छोटा सा क्यों है, और लंबे समय चलता नहीं, रुकता है बीच में, फिर दूसरा दुख आता है, ये सिलसिला क्यों चलता है? क्योंकि हमारे बहुत बड़े कर्मों के सिलसिले हैं, उसको हम लोग एक के बाद एक बात अनुभव कर रहे हैं। उस श्रृंखला को तोड़ना है तो आध्यात्मिकता ये एक ही मार्ग है जो ये सुख दुखों की श्रृंखला को तोड़ सकता है। और उसके बाद में फिर आप अच्छा कीजिए या बुरा कीजिए, आप आनंद ही रहेंगे, लेकिन भक्ति मार्ग में आने के बाद में बुरा करना तो बंद ही हो जाएगा, 100% बुरा करना समाप्त हो जाएगा, केवल पुण्य कार्य भगवान के आनंद के लिए बचेगा, और वही सुख का रहस्य है। अगर व्यक्ति को सुखी होना है तो भगवान की सेवा में लगना चाहिए प्रामाणिकता से।
तो अब इसमें मेरा एक और क्वेश्चन आता है कि अगर हम ये मान ले कि आज हम जो भी दुख सह रहे हैं ये हमारे पास्ट कर्मों की वजह से है, अब उसको तो हम चेंज कर नहीं सकते, क्योंकि जो हो गया सो हो गया। तो पहली चीज, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि इसको स्टॉप कैसे किया जाए, क्योंकि उसके इफेक्ट्स आना तो बंद होंगे नहीं। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसकी क्या गारंटी है कि जो हम आज कर रहे हैं उसका इफेक्ट फ्यूचर में नहीं आएगा। तो मतलब ये डिप्रेसिंग साइकिल हो गया कि पहले जो मैंने किया था उसका मैं आज भुगत रहा हूं, आज जो मैं करूंगा उसका मैं कल भुगतूंगा, तो कोई होप ही नहीं रही। तो इसको हम किस तरह से समझे और इसको हम किस तरह से अपनी लाइफ में उतारे कि भाई कहीं तो कुछ होप दिखे।
देखिए, भक्ति में आने के पश्चात सबसे पहले जो जघन्य पाप है उसको हमको बंद करने के लिए कहा जाता है। वो जघन्य पाप कौन से हैं? चार प्रकार के हैं। एक है प्राणियों की हत्या करके उनका मांस खाना, दूसरा है विवाह संस्कार के आगे पीछे, मतलब उसके बाहर जाकर व्यभिचार भोग लेना, फिर नशा करना, और जुआ खेलना, ये चार जो है ना वो जघन्य पाप बताए गए हैं, उसको हमको पहले बताते हैं कि इसको बंद करना चाहिए, उसके बाद हम भगवान के नाम का जप करते हैं। अधिक से अधिक जो दुख है ना वो ये चार जघन्य पापों के कारण आते हैं जीवन में। फिर आगे है विश्वासघात, असत्य बोलना और किसी का जीवन की हत्या करना, ये टोटल सात पाप है। इनमें के कारण ही मेन दुख आते जीवन में, बाकी किसी को हमने दुख दे दिया, किसी को बुरा भला कहा, किसी को पैसा चोरी किया, किसी को ये किया वो किया, वो भी साथ में आता है। और आज का हमारा जो जीवन है वो पिछले कर्मों का परिणाम है, हम जानते हैं कि मैंने यो किया था इसलिए ऐसे हुआ। तो आज जब हम पाप करना बंद कर देते हैं और केवल सत्कर्म करते हैं, भगवान के आनंद के लिए कर्म करते हैं, तो आज ही हमें आनंद का अनुभव होने लगता है। ऐसा नहीं कि परसों होगा, वो तत्क्षण होने लगेगा। और जो हमने 35 साल में जो अनुभव लिया है उसका अनुभूति हृदय में ये है कि पहले जो गलत काम करते थे उसके दुष्परिणाम पहले हमने भोगे, जब अच्छे कर्म करने लगे भगवान के विषय में जघन्य पापों को छोड़कर तो आनंद की अनुभूति हुई। ऐसा नहीं कि अभी दुख नहीं आ रहे हैं, वो तो संचित के अनुसार आ रहे हैं लेकिन उसका परिणाम नहीं हो रहा है, उसका तीव्रता कम हो गई है बहुत, क्योंकि भगवान का नाम का जप करने से सारे पुराने कर्म नष्ट हो जाते हैं, उतने ही बचते हैं जितने हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक हैं। बहुत सारे कर्म भगवान कहते हैं ना नष्ट कर देते हैं, मैं आपका सब कर्मों को नष्ट कर दूंगा, भगवान कहते हैं मोक्ष इच्छामि मा शुचः, चिंता मत करना, ऐसे भगवान वादा करते हैं। और उस वाक्य का अनुभव हमने अपने जीवन में किया है, एक बार वो चार जघन्य पाप छोड़ देंगे तो आर्धिक आनंद की जो भगवान ने हमको गारंटी दी है उसका अनुभव भी आप कर सकते हैं। इसलिए डिप्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है, जो पीछे हुआ हुआ, आज से अगर हमने तय कर लिया है कि हमने आगे ये गलत काम नहीं करना है जो खुद के लिए हानिकारक है, जनता को हानिकारक बाद में होंगे, पहले खुद को हानिकारक होंगे, तो खुद को तो पहले बचाना है उससे, तो फिर सुख का अनुभव होगा, तो फिर आपको ये विश्वास होगा कि जो मैंने कर रहा हूं ना वो ठीक हो रहा है, अब मैंने डॉक्टर की दवा खाई बीमारी ठीक हो रही है, ये विश्वास प्राप्त होने से हम अधिक विश्वास से वो दवाई लेंगे आगे ठीक होने के लिए। उसी प्रकार से जब दुखों का सिलसिला कम होते ही वो नजर आया, आनंद की अनुभूति होने लगेगी, तो इस प्रक्रिया पर विश्वास बढ़ेगा और आगे जाकर जो अभी 20 साल पहले जो अनुभूति हो रही थी ना वो अभी 20 साल के बाद में उसकी ज्यादा आनंद की अनुभूति हो रही है। इसी को विश्वास कहते हैं, इसी को श्रद्धा कहते हैं, जो निष्ठा के रूप में उसका रूपांतर होता है और जीवन में आनंद आता है। ये भक्ति मार्ग जो है ना वो केवल प्रवचन की बात नहीं है, ये अनुभव की और प्रैक्टिस करने की बात है, और जो भक्ति करता है उसके चेहरे पे उसका परिणाम दिखाई पड़ता है।
तो दर्शकों के लिए मैं एक चीज पे बहुत 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 ज्यादा फोकस करना चाहूंगा, जो अभी अभी विश्वरूप जी ने हमसे कही कि हमने जो पास्ट में कर चुका है उस चीज को रीसेट, उस चीज को एलिमिनेट किया जा सकता है।
बिल्कुल,
पहली चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई कि भाई थोड़ा हमारा डिप्रेशन कम हो गया कि हमने बहुत पाप किए हैं या बहुत गलत कर्म किए हैं, उसको भक्ति से नलिफाई किया जा सकता है। और जो दूसरी चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये एक ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसमें आज हम भक्ति करेंगे और हमें 10 साल बाद उसका आनंद प्राप्त होगा, इसमें जब हम भक्ति अच्छे से करते हैं तो उसका आनंद हमें जरूर मिलता है। तो ये बहुत अच्छे से समझ आया। तो मैं इससे एक रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने अभी कहा कि सात तरीके के पाप हैं और उसमें से चार मेन हैं, तो जब अगर कोई भक्ति में आना चाहता है और अगर कोई भक्ति करना चाहता है और इन चार चीजों को वो किसी कारणवश पूरी तरह से नहीं छोड़ पाता, तो क्या वो भक्ति शुरू नहीं कर सकता?
या कर सकता
ऐसे लोगों के लिए क्या किया जा सकता है, जैसे कि आपने जो चार या सात पाप बताए उसमें से अगर हम धीरे धीरे छोड़ना चाहें तो क्या हमारे लिए भक्ति करना पॉसिबल है?
बिल्कुल।
या हम 100% जब छोड़े तभी ही भक्ति शुरू कर सकते हैं?
ऐसा नहीं है। हमने भी जब ही पहले हम लोग घर पे इधर उधर मांसाहार करते थे, सब कुछ करते थे, तो सबसे पहले शुरुआत करना है भगवान के नाम के जप से, और भगवान के नाम के जप से ही आपको आंतरिक शक्ति प्राप्त होगी ये सब छोड़ने के लिए। तो आप आंतरिक शक्ति प्राप्त करेंगे, निश्चय शक्ति प्राप्त करेंगे जप करके, और एक एक चीज आपको छोड़ने की शक्ति प्राप्त होगी अपने आप छोड़ने का। जैसे वो बालक जो है ना वो गंदा खिलौना पकड़ के रखा है तो वो छोड़ नहीं पाता है उसको, अच्छा खिलौना देखेगा तो इसको छोड़ने में आसानी होगी। उस तरह से जब भगवान के नाम का जप करेंगे तो आपको आंतरिक मानसिक शक्ति प्राप्त होगी, निग्रह शक्ति प्राप्त होगी, फिर धीरे धीरे आपके ये पाप कर्म जो है छूट जाएंगे। आपको छोड़ने की पहले विश्वास हो गया कि ये छोड़ना है, फिर छोड़ने की शक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। तो ये ऐसा नहीं है कि आप अगर ये छोड़ने से तो भक्ति नहीं कर सकते, भगवान के नाम के जप के माध्यम से आपकी भक्ति का आरंभ होगा, और जैसे आप दीपक जलाएंगे ना, सारा अंधकार नष्ट हो जाएगा। छोटा दीपक होगा पहले, फिर बड़ा हो जाएगा, फिर बड़ा हो जाएगा, मशाल बनेगी, फिर ज्वाला बनेगी और सारा अंधकार मिट जाएगा। उसी तरह से पहले हम दीपक जलाएंगे, फिर मशाल बनाएंगे, फिर ज्वाला बनाएंगे, और सारा ये जो अंधकार है कुकर्मों का, पाप कर्मों का, वो अपने आप इस प्रकाश के प्रभाव से ही नष्ट हो जाएगा। तो शुरुआत करनी है भगवान के नाम के जप से, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, आईटी स्पेशलिस्ट हो, या कोई कर्मचारी हो, ये लकड़ी काम करने वाला कर्मचारी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबके लिए एक ही है रूल, धनी लोगों के लिए और पढ़ित अच्छे विद्या विभूषित लोगों के लिए अलग रूल नहीं है, सभी मानव जाति के लिए एक ही नियम है। कलयुग भगवान के नाम पर आधारित है, भगवान का नाम करेंगे तो आपको उत्साह प्राप्त होगा, निश्चय शक्ति प्राप्त होगी और ज्ञान भी प्राप्त होगा। उसके आधार पर कोई निराश होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सभी गलत चीजें हमसे छूट जाएगी जब हम भगवान के नाम का आधार लेंगे और जीवन में उसको सर्वस्व बनाएंगे।
जब हम ये जानते हैं कि हम भगवान के नाम से इस सब चीजों से मुक्त हो सकते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक आम इंसान के दिमाग में ये आता है, भगवान है कौन? क्योंकि हम अपने भारतवर्ष में आज अगर भगवान की बात करें तो हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं, जिसमें कि हम एक्चुअली अगर मतलब ये एक बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि जब भी कोई अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ाना चाहता है तो सबसे पहली कंफ्यूजन तो उसकी लाइफ में ये होती है कि भाई किसके पास जाएं। तो जनरली लोग जिस प्रांत में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं या जिससे वो बचपन से थोड़े इंस्पायर होते हैं, उनके पाथ पे चलते हैं। तो आप इस बारे में बताइए कि हमें यह समझ आ गया कि हमें भगवान का नाम लेना है, पर भगवान है कौन और किनका नाम लें जिससे कि हम आगे बढ़ सकें, और क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों उन्हीं का नाम लिया जाए।
सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। अगर आपको अमेरिका जाना है तो आपको पहले पता करना होगा अमेरिका किधर है, कितना घंटा लगेगा, फ्लाइट का खर्चा कितना होगा, वीजा पासपोर्ट ये क्या होता है, सब कुछ जानकारी करके फिर आप अमेरिका जाने का संकल्प करेंगे। उसी प्रकार से अगर जीवन के लक्ष्य को समझना है, पहले ज्ञान प्राप्ति आवश्यक है, और ज्ञान प्राप्ति के लिए कोई अच्छा मार्गदर्शक मिलना जरूरी है। जैसे हमको एक कॉलेज मेट के रूप में मिला था पथ प्रदर्शक गुरु, जिसको कहते हैं, जिसने मार्ग दिखाया। फिर शिक्षा गुरु मिले जिन्होंने शिक्षा दी हमको, ज्ञान दिया। तो ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान का अर्थ है समझना कि भगवान कौन है, मैं कौन हूं, मेरा भगवान का रिश्ता क्या है, और समझने के बाद कि मेरा रिश्ता क्या है, वो रिश्ता कैसे जताना है, शुरुआत करनी है उसकी, ये हमारे भक्ति के स्टेप्स हैं। तो भगवान कौन है ये हमको शास्त्रों में पता चलता है, संतों के माध्यम से सत्संग में पता चलता है, और वो सत्संग ये बताता है कि बहुत सारे भगवान हैं, लेकिन उसमें ईश्वर परम कृष्ण, यानी बहुत सारे भगवान हैं जो शक्तिशाली हैं, अधिकारी हैं, उसमें एक परम ईश्वर है, ये सर्वोच्च ईश्वर है जो इन सारे भगवानों को अपनी अपनी सेवा देते हैं। जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री हैं और बहुत सारे मंत्रीगण हैं, वो अपने अपने अधिकार में जल संपदा, वायु संपदा और धान्य संपदा पे काम करते हैं, उनके अलग अलग मिनिस्ट्री है, और एक प्रधानमंत्री है जो सबको नियंत्रण करता है। उसी प्रकार से बहुत सारे देवता हैं, गणेश जी हैं, शिव जी हैं, पार्वती जी हैं, इंद्र हैं, सूर्य हैं, चंद्र हैं, और उन सबके ऊपर एक परम भगवान है जो उनका नियंत्रण करते हैं, उनके आदेश पर सब कार्य चलता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस्कॉन का भक्त हूँ, हरे कृष्ण का भक्त हूँ। भगवत गीता कहती है, जो जगत विख्यात जगत मान्य भगवत शास्त्र है, धर्मशास्त्र है, वो कहता है कि ईश्वर परम कृष्ण अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्व प्रवर्तते। कई बार भगवान ने गीता में कहा है, श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन आता है, उपनिषदों में, पुराणों में, हर प्रकार के शास्त्र में भगवान की जो सर्वोच्च स्थिति है उसका वर्णन आता है। इसलिए हम ऐसे नहीं कि खाली कृष्ण को चाहते इस पर नाम लेते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान परम भगवान है। षड ऐश्वर्य से पूर्ण भगवान की व्याख्या पराशर मुनि ने की है, पराशर संहिता में व्यासदेव जी ने व्याख्या की है, उसके अनुसार उस व्याख्या में श्री कृष्ण सर्वोच्च भगवान के रूप में प्रस्तुत होते हैं, इसलिए हम उनका नाम जप करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं सबसे पहले बचपन में गणपति जी का भक्त था, उसके बाद शिव जी का भक्त बना, और इन्हीं की कृपा से मुझे भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त हुई है, क्योंकि मैंने शिव जी से प्रार्थना भी की थी कि आपने मुझे भी फर्स्ट एमबीबीएस को अच्छा पास करा दिया, थैंक यू वेरी मच, लेकिन मैं आपका ऋणी हूं, कृतज्ञ हूं, अभी मुझे पता नहीं क्या मांगना है आपसे, लेकिन मेरी कृतज्ञता के कारण मैं पूछता हूँ कि आपको मुझे मेरे लिए जो कल्याणकारी होगा ना वही मुझसे करवाओ। और 3 महीने में मैं कृष्ण के मंदिर में था और कृष्ण की भक्ति में प्रवृत्त हो गया। और आज भी मेरी गणेश जी के प्रति और शिव जी के प्रति मेरे मन में आस्था भक्ति है, नष्ट नहीं हुई है, मैंने त्याग नहीं किया उनको, लेकिन उन्होंने मुझे सर्वोच्च भगवान, उनके जो भगवान है, उनके यहाँ पर आस्था दिखाया है। तो वो भी कह रहे हैं, इतने सारे देवता लोग भी कह रहे हैं कि ईश्वर परम कृष्णा, और कृष्ण भी कह रहे हैं कि मैं ही भगवान हूँ। तो उसमें कोई मतभेद या कोई डाउट और संशय नहीं है उसके अंदर, ये बहुत जाहिर बात है। इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है और ज्ञान सत्संग में प्राप्त होता है। तो हम कोई भी हो, पढ़े लिखे हो ना पढ़े हो, धनवान हो गरीब हो, सत्संग करना बहुत आवश्यक है। सत्संग में भगवान का परिचय होता है और फिर भगवान का रास्ता प्राप्त होता है। और सत्संग ऐसे नहीं कि एक बार किया रास्ता प्राप्त होगा छोड़ दिया, सत्संग नियमित रूप से करना पड़ता है। जैसे हमको 3 बार दिन में खाना पड़ता है, रोज हवा लेनी पड़ती है प्राणवायु, उस तरह से आत्मा के लिए हर रोज नियमित रूप से सत्संग होना चाहिए और भगवान के नाम का जप होना चाहिए। वो आत्मा का पोषण है, वो बहुत आवश्यक है।
तो दर्शकों ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम अपनी लाइफ में कुछ भी आगे बढ़ने के लिए सीखते हैं, तो अगर हमें अपनी भक्ति में भी आगे बढ़ना है तो उसके लिए ज्ञान अर्जित करना, सीखना बहुत जरूरी है। और विश्वरूप जी ने बहुत अच्छे से कहा ये चीज कि ये चीज सत्संग से, इसका मतलब कि हम जो दूसरे लोग हैं जो इस पाथ पे चल रहे हैं, जो भक्ति को जानते हैं, उनके साथ रहने से हम इस चीज को बहुत अच्छे से जान पाएंगे। और आज के काल में सत्संग शायद ना हो रहे हो, बट ऐसे माध्यम से, हमारे प्रोग्राम्स के माध्यम से, हमारे हरे कृष्ण टीवी के माध्यम से आप ऐसा सत्संग रोज अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं और भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है हमारे क्वेश्चन आंसर्स का। मैं अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने क्वेश्चंस हमारे चैट में पोस्ट कीजिए। उससे पहले मैं दर्शकों से एक विनंती करना चाहूंगा कि कार्तिक मंथ के सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, ये बहुत ही ऑस्पिशियस मंथ है, इसमें सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। और इस मंथ में अगर आप किसी भी तरीके से हरे कृष्णा टीवी को सपोर्ट करना चाहेंगे तो हम आपके बहुत आभारी होंगे। हरे कृष्णा टीवी आज 4 करोड़ लोगों के घर में फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी एड के दिखाया जा रहा है, और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हर तरह का कंटेंट, हर तरह का सत्संग हम हर किसी को दे सके। बट इस सब चीजों के लिए आपकी सेवा की जरूरत पड़ेगी, और आप किसी भी तरीके से, छोटी या बड़ी, किसी भी तरीके से अगर इसमें अपना योगदान करना चाहेंगे तो हम आपके बहुत आभारी होंगे। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन आंसर राउंड में, जिसमें कि हम ऑडियंस के लाइव क्वेश्चंस लेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे ऑडियंस की तरफ से आ रहा है, एक मिनट दीजिए हमारी स्क्रीन पे। भव्या सिसोदिया जी की तरफ से ये पूछती हैं कि हाउ कैन आई नो दैट आई एम अ डिवोटी ऑफ भगवान कृष्णा, प्लीज बताइए प्रभु जी, आई एम अ स्टूडेंट एंड आई वांट टू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये पूछ रही हैं कि मैं किस तरह से जानूं कि मैं भगवान कृष्ण की भक्त हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं और मैं इस बारे में जानना चाहती हूँ कि मैं खुद को कैसे जानूं कि मैं भगवान कृष्ण की भक्त हूं।
अगर आपकी भगवान पर कृष्ण पर श्रद्धा है और आपको यह ज्ञान है कि भगवान कृष्ण परम पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं और आप उनका नाम का जप कर रहे हैं, तो आप कृष्ण की भक्त हैं। बहुत सिंपल बात है, आप ही तय कर रहे हैं और आप ही उनका नाम ले रहे हैं, तो आप अपने आप उनकी भक्त बन जाती हैं। और आपको बता जानकर ही खुशी होगी, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम, सब जीव कॉन्स्टिट्यूशनली स्वभाव से, स्थायी भाव से भगवान कृष्ण के भक्त हैं। कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। जैसे कोयले के ऊपर राख होती है, तब उनको फूक लगाते तो राख निकल जाती है और अग्नि उत्पन्न होती है। तो अग्नि है अंदर ही, वे राख के नीचे ढकी हुई है, लेकिन जब फूक लगाते हैं तो अग्नि उत्पन्न हो जाती है। उस प्रकार से भगवान का नाम लेने से अंदर की जो कृष्ण भक्ति है वो जागृत हो जाती है। तो आप स्वभाव से और साई भाव से अनन्य और नित्य कृष्ण के भक्त हैं। कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते हैं।
अमेजिंग। तो अगर आप भगवान का नाम लेते हैं और उसमें रुचि रखते हैं और आप भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें आपको प्रूफ करती हैं कि आप एक भक्त हैं। और अभी विश्वरूप जी ने एक बहुत अच्छी तरीके से कहा कि जो भी जीव है उसके अंदर ये भक्ति मिनिमाइज फॉर्मेट में
होती है, सुप्त अवस्था में होती है।
तो बस उसको एक थोड़ी सी पुश की जरूरत है, वो जरूर बाहर आएगी। तो तो हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है रचना शर्मा जी की तरफ से। ये पूछ रहे हैं कि हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने आई अवॉइड अनियन एंड गार्लिक बट स्टिल क्रेविंग इज देयर। तो ये पूछना चाहती हैं कि मैं प्याज और लहसुन को अवॉइड करती हूँ बट मुझे क्रेविंग बहुत होती है, तो क्या किया जाए?
आप नियमित रूप से भगवान का प्रसाद ग्रहण करते रहिए। देखो, हम लोग सब लोग अनियन गार्लिक खाते थे और भी बहुत चीजें खाते थे, और बहुत चाव भी था, रुचि भी थी, अभी भी दिमाग में वो आरएनए डीएनए बैठा हुआ है, मेमोरी का, उसके स्वाद वाला अभी भी है 35 साल के बाद। लेकिन उसके हमने फिर कैसे छोड़ दिया, उसको छोड़ कैसे पाए, क्रेविंग को कैसे छोड़ दिया? उसका एक ही उत्तर है, नियमित रूप से कृष्ण प्रसाद आप ग्रहण करते रहिए। उसके ही प्रभाव से सारी ये जो नकारात्मक मानसिक प्रवृत्तियां हैं, जो क्रेविंग्स हैं, नॉन वेज के लिए है, चाय के लिए है, अनियन गार्लिक के लिए है, ये सब अपने आप समाप्त होते आपको नजर आएगी। लेकिन कृष्ण प्रसाद खाते खाते आपको नियमित रूप से भगवान के नाम का जप करना है, उसको बढ़ाते रहना है, तो आपकी आध्यात्मिक शक्ति और निश्चय शक्ति बढ़ेगी, फिर ये क्रेविंग्स कमजोर होने लगेंगे। लेकिन जब क्रेविंग होंगे तब आप उनको वो अनियन गार्लिक का स्वाद मत देना। जैसे कि एक शेर को जब पिंजरे बंद करते ना, तो उसको 10 दिन कुछ भी नहीं खिलाते, वो बहुत चिल्लाता है, फिर भी कुछ नहीं देते उसको, फिर वो कमजोर हो जाता है, एकदम कमजोर होता है, फिर बिल्ली जैसा म्याओं म्याओं करता है, फिर 100 ग्राम 200 ग्राम मांस फेंकते हैं तो फिर वो शांत हो जाता है। जब आप क्रेविंग होती है ना, तब उसको खिलाते रहेंगे तो वो बलवान होते जाएगी क्रेविंग, उस समय देना नहीं है, उसमें कृष्ण प्रसाद खाना है आपको, स्वादिष्ट जो आपको अच्छा लगे वो कृष्ण प्रसाद खाना है, चाहे पाव भाजी हो, चाहे डाबेली हो, चाहे जो भी पिज्जा हो, वो अनियन गार्लिक के बगैर भी बनता है, उसको भगवान के लिए भोग लगा के खाइए, फिर आपकी क्रेविंग कम कम होती जाएगी। ये कुछ समय की बात है, प्रैक्टिस की बात है।
और अगर आपको किसी भी तरह की डिशेस, किसी भी तरह की रेसिपीज की जरूरत है तो आप हरे कृष्ण टीवी को देखिए, वहां पे आपको काफी स्वादिष्ट रेसिपीज जो कि बिना प्याज लहसुन की बनती है उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी।
हरे कृष्णा संस्था में जितने प्रकार के हजारों लाखों प्रकार के व्यंजन आपको मिलेंगे वो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेंगे। आपकी सारी जिजीविषा तमन्नाएं हरे कृष्णा मंदिर में आकर प्रसाद पाकर संतुष्ट हो जाएगी, इसका मैं आपको गारंटी देता हूँ।
अमेजिंग। तो हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है रीमा मलिक जी की तरफ से। रीमा मलिक जी पूछती है कि हरे कृष्णा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंटिन्यू इन भक्ति, लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन, हाउ टू कोप अप। तो ये पूछते हैं कि भक्ति में कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल है, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन आती है लाइफ में, इससे हम कैसे उभरे?
सबका उत्तर पूरा चक्र काट के घूम फिर के एक ही जगह आता है, वो है सत्संग। अगर मुझे याद है अभी भी, मैं फर्स्ट एमबीबीएस में ना, मेरे को इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में, इसलिए मैं पढ़ाई करता नहीं था, लेकिन जब मैं लाइब्रेरी में गया तब मुझे पढ़ने की इच्छा उत्पन्न हुई, और फिर मैं लाइब्रेरी में बैठ के ही पढ़ाई की इच्छा निर्माण की और पढ़ाई भी की। लेकिन जब मैं घर पे आता था घर से, तो मुझे पढ़ाई का इंटरेस्ट नहीं था, और मैंने फिर पढ़ाई पे रुचि उत्पन्न की और पढ़ाई की, और फर्स्ट एमबीबीएस में मैंने, जैसे मैंने कहा, शिव जी से प्रार्थना करते करते फर्स्ट क्लास में पास हो गया मैं। तो भक्ति करने मार्ग में भी डिस्ट्रैक्शन है, पढ़ाई के मार्ग में भी डिस्ट्रैक्शन है, तो करना क्या है? जो भक्ति कर रहे हैं उनका आपको संग रखना है। यू आर नोन बाय योर कंपनी व्हाट यू कीप। तो अगर आपको भक्ति में इंटरेस्ट और आपको लगता है कि डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो आपको वो डिस्ट्रैक्शन जिनको नहीं है उनके संग में रहना है। अगर आपको अच्छे मार्क लाने हैं तो आपको उन विद्यार्थियों के बीच में रहना है जो अच्छे मार्क लाते हैं। अगर आपको यशस्वी रहना है जीवन में तो यशस्वी लोगों का संग करना है। उसी प्रकार से अगर आपको भक्ति में रहना है तो जो भक्ति कर रहे हैं यशस्वी रूप से उनका संग नियमित रूप से रखना है, एक बार नहीं साल में, नियमित रूप से। जैसे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे आत्मा को नियमित सत्संग मिलेगा तो उसका डिस्ट्रैक्शन सब कम हो जाएंगे।
इसमें मेरा एक डाउट और एक सवाल आता है कि कई बार टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से हर किसी के पास एसोसिएशन जो कि सत्संग होता है उसका मौका नहीं होता। तो जहां पे मान लेते हैं कि अगर कोई मंदिर के पास रहता है या किसी के ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि भक्ति की तरफ थोड़ी रुचि दिखाते हैं तो उनको थोड़ा सत्संग मिल सकता है, तो वो लोग क्या करें जिनके पास ऐसा फैसिलिटी नहीं है, वो किस तरीके से सत्संग ले सकते
हैं? विप्लव जी, मैं आपसे बिल्कुल असहमत हूँ इस बात पर कि नहीं अवेलेबल है अपॉर्चुनिटी। कैसे कह सकते हैं? अरे सबके हाथ में देखो यंत्र तो आ गया ना, ये यंत्र आएगा तो आपको, आज तो एक रास्ते में काम करता है ना भिखारी, जो रास्ता खोदता है और वो कंस्ट्रक्शन में काम करता है, उसके पास भी ये है, उसके पास भी यूट्यूब है, उसके पास फेसबुक है, क्या नहीं है उनके पास। अभी कोरोना में हम लोग 10 महीने घर पे रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मोबाइल था हमारे पास ना, इसके अंदर पूरा दुनिया भर का कनेक्शन है। और कितना सत्संग आपको चाहिए आप नहीं कर सकते, उतना सत्संग इसमें अवेलेबल है। सुबह उठने
वाह,
के बाद आप यूट्यूब खोलिए, उसमें सत्संग मिलेगा, लेक्चर मिलेंगे, प्रवचन मिलेंगे, कितने साधु संतों का संग मिलता है। तो ये मैं बिल्कुल मैं मानता नहीं हूं कि नहीं मौका मिलता है, इच्छा होने से मौका मिलता है। आपको पिक्चर देखनी है अमिताभ बच्चन की, आपको बराबर पता चलेगा कौन से थिएटर में लगी हुई है और कौन सी नई फिल्म आई है और कौन सी हिट हुई है, आपको बराबर पता चलेगा। क्यों पता चलेगा? क्योंकि आपको अमिताभ बच्चन की पिक्चर देखने की इच्छा है, आप चाहते हो। वैसे आपने अगर चाहना शुरू किया सत्संग चाहिए, तो आपको सत्संग मिलेगा, वो भी इतना बेसुमार मिलेगा, आप उतना दिन भर आपका पूरा नहीं होगा। वो मेरे अभी इस मोबाइल
वाह
में इतने लेक्चर सुनने बाकी है कि मेरे पास समय नहीं है, इतने प्रोग्राम मुझे सुनने बाकी हैं गुरु जी के और संतों के। तो सत्संग जो है ना, अभी आजकल के जमाने में इतने सारे मीडिया और एडवांसमेंट, डिजिटलाइजेशन हो रहा है हर चीज का, हद हम एक क्षण में अमेरिका में क्लास दे रहे हैं। कल मैंने अमेरिका में क्लास दिया, अभी मैं मुंबई में क्लास दे रहा हूँ, एक क्षण में साउथ अफ्रीका में क्लास दे रहे हैं, एक साउथ अफ्रीका के लोग यहाँ क्लास दे रहे हैं, अमेरिका के लेक्चर मैं सुन रहा हूँ, मैं उनको लेक्चर दे रहा हूँ। इतना विश्व पास में आया है इस सॉफ्ट, ये क्या कहते हैं उसको, मोबाइल की वजह से। तो मैं ये बिल्कुल मानता नहीं हूँ इस बात को, आपको इच्छा होनी चाहिए बस। कमी है तो केवल इच्छा की कमी है, इच्छा है
वाह,
तो भगवान भी आपके हृदय में बैठे हुए हैं, आपकी तुरंत मुलाकात होगी। इच्छा होनी चाहिए और मार्ग मिलना चाहिए, सत्संग में मिलेगा वो, तो सत्संग की कोई कमी नहीं है। जैसे अगर दारू पीनी है तो दारू की दुकानों की कमी नहीं है, वैसे सत्संग चाहिए, संतों की कमी नहीं है। डोंट वरी अबाउट इट, हैव डिजायर। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? इच्छाओं को कल्टिवेट करना, वो केवल मनुष्य कर सकता है। तो आप इच्छा कल्टिवेट कीजिए कि आई वॉन्ट सत्संग, फिर भगवान की जिम्मेदारी आपको सत्संग देने की, डोंट वरी अबाउट इट।
तो दर्शकों इस चीज पे बहुत 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 ध्यान रखिए कि कुछ भी होने से पहले उसकी डिजायर,
होनी
उसकी
चाहिए,
इच्छा बहुत जरूरी है। और अगर आपके पास इच्छा है तो जो भी आपकी लाइफ में है वो आपको जरूर मिलेगा, कहीं ना कहीं से मिलेगा। और विश्वरूप जी ने बहुत अच्छी बात की कि ये भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको कहाँ से देंगे, आप इच्छा तो कीजिए। तो हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा शशिकांत त्रिपाठी जी की तरफ से, माफ कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा कमलेश पाल जी की तरफ से। ये पूछ रहे हैं कि प्लीज गाइड हाउ टू बैलेंस लाइफ विद मेडिकल प्रोफेशन, जो शायद ये भी मेडिकल प्रोफेशन में से हैं, तो ये पूछना चाहते हैं कि ये अपनी लाइफ को और अपनी लाइफ में भक्ति और मेडिकल प्रोफेशन को किस तरह से बैलेंस करें।
सबसे पहले सुबह उठिए और सुबह जल्दी उठिए, हाँ सूर्योदय के पहले उठिए और भगवान का नाम जप कीजिए, अपनी आध्यात्मिक बैटरीज पूरी चार्ज कीजिए, फिर आधा घंटा सत्संग सुनिए, मोबाइल पे सुनिए या तो टेप में सुनिए या तो डायरेक्ट सुनिए जैसा मौका मिलेगा, और फिर काम पे जाइए और हृदय से दिलो जान से अपनी सेवा कीजिए मेडिकल प्रोफेशन में प्रामाणिकता से। शाम को घर पे आइए, जब भी आएंगे, कोई 7 बजे आएगा, कोई 8 बजे आएगा, आने के बाद स्नान कीजिए, फिर एक 15 मिनट बैठ के जप कीजिए, थोड़ा सत्संग सुनिए, भजन सुनिए और फिर सो जाइए। लेकिन देर से उठने वाले का काम फिर गड़बड़ हो जाता है। देर से सोएंगे तो भी आपको जल्दी उठने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि जल्दी उठने के काम शुरू होने के पहले, जो काम का वेग है ना वो शुरू होने के पहले भगवान के नाम में अपना अधिष्ठान रखना चाहिए। इस तरह से मैं अभी 35 साल से मेडिकल प्रैक्टिस में हूँ, हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैनेजमेंट सब संभालता हूँ, 13 हॉस्पिटल की भी देखभाल करता हूँ। तो उसमें राज एक ही है, एक ही राज है, ब्रह्मा मुहूर्त पर उठकर भगवान के नाम का जप करना नियमित रूप से, और सत्संग करके फिर काम पे जाना, और बीच में समय मिले किताब खोल के 15 मिनट 10 मिनट आपको मिलेगा लंच आवर में, तभी भी पढ़ना, शाम को आके निश्चित आपको सत्संग करके भगवान का नाम लेके फिर विश्राम करना है। देर रात तक जगना नहीं है, बस मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉल आएगा तो ठीक है आप अटेंड कीजिए, लेकिन जानबूझ के टाइम पास करते हुए देर रात तक जगना नहीं है। किसी ने पूछा था कि भजन सुनना स्पिरिचुअलिटी है क्या? बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी है, भगवान के विषय में भजन सुनना स्पिरिचुअलिटी है। आप भी सुनिए, आपको मनोरंजन भी होगा, आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। तो हम लोगों ने भक्ति वेदांत अस्पताल में करीब करीब 150 डॉक्टर्स हैं जो इस भक्ति मार्ग का अनुभव और प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सब लोगों का यही प्रण है, सुबह जल्दी उठना है, भगवान के नाम का जप करके फिर काम पे जाना है।
तो मैं इसी चीज में एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि सुबह जल्दी उठे कैसे, क्योंकि ये एक चैलेंज होता है जो आधे से ज्यादा पॉपुलेशन को और इतनी सब लोगों की जिंदगी में एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है कि यार हमें पता तो है कि सुबह जल्दी उठना है, हमें पता तो है कि जल्दी उठने से बहुत फायदे होते हैं, हम कोशिश भी करते हैं, कुछ दिनों तक जल्दी उठ भी पाते हैं, उसके बाद जल्दी उठना इम्पॉसिबल है। तो ये जो आप 35 इयर्स से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप अपनी सीक्रेट बताइए कि आप जल्दी कैसे उठ पाते हैं।
मैं केवल वही बताऊंगा जो मैं कर रहा हूं। उसका सीक्रेट ये है कि मैं, अब आपको बहुत आश्चर्य लगेगा, बहुत यू विल बिकम सरप्राइज्ड, मैं 6 बजे मेरा डिनर ले लेता हूं।
वाओ,
मेरा मेन मील सुबह 10 बजे ले लेता हूं और शाम का डिनर 6 या 6:30 मैक्स ले लेता हूं। उसके बाद 9:30 को सो जाता हूं। हो सकता है एवरीबॉडी कैन नॉट स्लीप एट 9:00 9:30, बट भोजन जल्दी करना ये सुबह जल्दी उठने का एक बड़ा रहस्य है। आप बड़े थोड़ा देर भी सोते हो, 10-11 बज सकते हैं, लेकिन आपका भोजन, अगर मैं 6 बजे खाता हूं, आप 7 बजे खाइए, उसके बाद भी मत खाइए। देर से खाने से देर तक हजम होना का कार्य चलते रहता है, पचन क्रिया देर तक चलती रहती है, फिर आप सोते नहीं हो, आप पचन क्रिया ही कर रहे हो। तो विश्राम कब मिलेगा? जब पचन क्रिया समाप्त होगी तब विश्राम शुरू होगा आपका। तो जल्दी कैसे उठ सकते हैं आप? ये पूरा साइंस है, हमारा शरीर भी एक साइंस है, उसकी दिनचर्या भी एक साइंस है, उसको शरीर के नियम के अनुसार चलेंगे ना तो यशस्वी रहेंगे आप। जो चाहे वो कर सकते हैं, शरीर महाशय को जैसा चाहे झुका सकते हैं आप। अभी आप रात को 11 बजे अगर पनीर का सब्जी खा के डिनर खाएंगे तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आप जल्दी उठेंगे? नॉट पॉसिबल। और आपको जल्दी अगर उठना है तो जल्दी आने की प्रक्रिया आपके शाम के भोजन से शुरू होती है, आपके निद्रा के समय से शुरू होती है। आप निद्रा के पहले भगवान का चिंतन करके प्रार्थना करके सोएंगे तो वहां पर भी निद्रा का क्वालिटी आपकी डिफरेंट होगी। और ये सब निश्चय का भी परिणाम है, निश्चय करेंगे तो सब कुछ होगा। आदमी को चाहिए ना, अगर आपको 2 बजे की फ्लाइट पकड़नी है अमेरिका की तो कैसे आप पहुंचते हैं वहां पर? क्योंकि आपको पहुंचना है, यू वॉन्ट टू रीच, तो यू विल रीच, पैकिंग करेंगे सब कुछ करके पहुंच जाएंगे आप एयरपोर्ट। उसी प्रकार से सुबह उठना है तो आप उठ सकते हो, वो साइंस को फॉलो कीजिए, डिनर का टाइम बदल लीजिए, जल्दी सो के उठ जाइए।
तो एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव टेक्निक आज हमें पता चली है कि अगर हम अपना खाना जल्दी खा लें, सनसेट से पहले खा लें या काफी जल्दी खा लें, तो हम सुबह जल्दी आसानी से उठ पाएंगे। और ये 35 इयर्स का एक्सपीरियंस बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा,
बिल्कुल
आप इसको जरूर फॉलो कीजिए और शायद आप इस प्रॉब्लम से, सुबह जल्दी ना उठने की प्रॉब्लम से थोड़ी निजात तो पा पाएंगे। तो हम अब चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अभिषेक चौहान जी की तरफ से। ये पूछते हैं कि हाउ टू मेक डिफरेंस बिटवीन फेक गुरुज एंड ढोंगी बाबास एंड रियल स्पिरिचुअल गुरु। तो जानना चाहते हैं कि जो फेक गुरुज होते हैं, जो कि असल में गुरु नहीं होते या ढोंगी बाबा होते हैं, उनके बीच में और एक असली गुरु के बीच में हम डिफरेंस किस तरह से पहचाने कि कौन असली है और कौन नकली है?
अगर आपको शुद्ध सोना, आपका जो विवाह है और आपको शुद्ध सोना खरीदना है, तो पहले आप ना शुद्ध सोना कहाँ मिलता है, शुद्ध सोना कैसा होता है, उसको कैसे पहचानना है, ये पहले सीख लेंगे। फिर 2-4 लोगों से बात करेंगे कि शुद्ध सोना कैसे पहचानना है और कहाँ मिलता है, और फिर आप मार्केट जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप बिना कुछ जानकारी के पैसे लेकर जाएंगे कि आई वॉन्ट टू बाय गोल्ड, तो आपको पीतल मिलेगा चमकता हुआ पीला रंग वाला। उसी तरह से आप, ये दुनिया भी एक बड़ा मॉल है और स्पिरिचुअल मॉल भी बहुत बड़ा है, उसके अंदर बहुत प्रकार के रास्ते हैं, बहुत प्रकार के गुरु हैं, बहुत प्रकार के सिद्धांत हैं, बहुत प्रकार के लक्ष्य हैं, हर एक प्रकार के, ये ह्यूज मॉल। और आपको अगर सही गुरु को ढूंढना है तो उसके पहले आपको पहले ज्ञान प्राप्त करना होगा। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, सत्संग में ज्ञान मिलता है और उस ज्ञान से आपको पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है। भगवान को अर्जुन ने भी ये प्रश्न पूछा था कि मैं सच्चे गुरु को कैसे पहचानूं, तो भगवान ने गीता में भी उसको पूरा वर्णन दिया है कि वो चलता कैसे है, बोलता कैसे है, क्या करता है, उसके जीवन का लक्ष्य क्या होता है, वो कार्य कैसे करता है, ये सब कुछ भगवान ने बताया है। और संक्षेप में आपको बताता हूं मैं, सच्चा गुरु वो है जो संप्रदाय में संलग्न है, और संप्रदाय सच्चा वो है जो भगवान से संलग्न है। अंतिम लक्ष्य जो है वो अंतिम गंतव्य स्थान जिसमें भगवान है, ऐसे संप्रदाय से, बोनाफाइड संप्रदाय से वो व्यक्ति संलग्न होना चाहिए, उसका भी गुरु होना चाहिए और उस गुरु का गुरु भी होना, ऐसे परंपरा होनी चाहिए। उस परंपरा से वो शिष्य के रूप में संलग्न होना चाहिए। और फिर गुरु के लक्षण है कुछ कि वो भगवान से समर्पित है, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढप्रतः, ये सब वर्णन भगवत गीता में भी दिया है, शास्त्रों में दिया है। वो गुणों से आपको उनको परखना है। आप चाहे 10 साल उनको परखिए, 2 साल परखिए, लेकिन पूरा विश्वास कर लीजिए कि जो जो गुरु के गुण हैं, जो भगवान से 100% समर्पित हैं, भगवान के विषय में ही चर्चा करते हैं, भगवान की सेवा में रत रहते हैं, भगवान ही उनके जीवन का लक्ष्य है, समर्पित है पूरे जीवन में, ऐसे व्यक्ति को जब आप ढूंढेंगे और विश्वास होगा, फिर उसके बाद में आप उनको गुरु के रूप में स्वीकार कीजिए। लेकिन परखने के लिए आपको ज्ञान प्राप्ति है, सत्संग की प्राप्ति भी आपको मिल सकती है, और पता करके, फिर एक बार पता कर लिया, फिर परखना नहीं, उसके बाद में परख आपको जितना करना है उतना साल कर लीजिए। एक बार परख करके आपका विश्वास हो गया, फिर सरेंडर, समर्पण, यही मार्ग है उसका। तो ज्ञान के बिना क्या होता है? आपको पैंट खरीदनी है तो भी आपको पता होना चाहिए कौन से पैंट का कपड़ा अच्छा है, तो उधर भी आपको जरूरत है मार्गदर्शन की। तो पैंट है, घर है, गाड़ी लेनी है, मोटरसाइकिल लेनी है, 4 बेडल लेनी है, आपको हर जगह ज्ञान की जरूरत है मार्गदर्शन की। वैसे ही गुरु भी खरीदना है हमें, गुरु भी ढूंढना है आपको, गुरु का चयन करना है, तो ज्ञान की तो आवश्यकता होनी जरूरी है, ज्ञान आवश्यक है।
तो ज्ञान से ही आप गुरु को पहचान पाएंगे, और ज्ञान से ही आप समझ पाएंगे कि ये गुरु सही है या नहीं, और अंततः गुरु को सरेंडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है,
बहुत इंपॉर्टेंट,
परखने के बाद, ताकि आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो सके। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, माफ कीजिएगा, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जानवी जी की तरफ से। जानवी जी पूछते हैं कि प्रभु जी, क्या आपके कॉलेज लाइफ में आपके डिवोटी फ्रेंड्स थे? प्रभु जी, मेडिकल कॉलेज में डाइसेक्शन भी करनी पड़ती है, प्लीज गाइड। तो शायद ये मेडिकल कॉलेज से ही है ये पूछना चाहते हैं।
सौभाग्य रहा है, मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मेरे मेडिकल कॉलेज में सबसे पहला भक्त मैं ही बना। तो बाद में मैंने लोगों को भक्त बनाया और उनका संग मुझे प्राप्त हुआ। अभी मैं 83 की बात कर रहा हूँ, जब मैंने पहली बार ये मार्ग अपनाया, सबसे पहले जाकर। और फिर हमारे डॉक्टर संखे और डॉक्टर बीसी शाह, डॉक्टर अशोक शेट्टी और बहुत सारे डॉक्टरों को इस मार्ग में हमने प्रवृत्त किया। और अभी जे अस्पताल में सैकड़ों के रो संख्या में डॉक्टर्स भक्त हैं, प्रोफेसर्स में भी है, स्टूडेंट्स में भी है। तो अगर भक्तों का संग नहीं होगा तो हमको निर्माण करना है। लेकिन मैं जुहू मंदिर में जाकर सत्संग लेता था उस समय, और प्रेरणा लेकर कॉलेज में आता था, और मेरे कॉलेज के हॉस्टल के रूम में सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया करता था, और उसमें से ये मेरा सत्संग जो है वो निर्माण हुआ, जो मेरे लिए आवश्यक था। लेकिन भगवान की प्रेरणा से, भगवान की कृपा से सत्संग प्राप्त होता है, इच्छा होनी चाहिए खाली।
तो दूसरी चीज ये भी पूछना चाहते थे कि कॉलेज में डाइसेक्शन करना पड़ता है।
डाइसेक्शन तो वो तो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर बनने की प्रक्रिया का एक मूलभूत अंग है, वो तो आपको करना ही है, डू द नीडफुल, उसमें सेंटिमेंटल नहीं बनना है। हमने डिसेक्शन भी किया है, हमने पैथोलॉजी में सब कुछ काम किया है, फार्माकोलॉजी में किया है, सर्जरी में किया है, मेडिसिन में किया है, सभी प्रकार के ब्रांचेस में हम लोग गुजरे हैं पढ़ाई करते समय। वो आपको डॉक्टर बनने के लिए आवश्यक मार्ग है, वो विधि है उसकी, वो विधि पालन के डॉक्टर कैसे बनेंगे। लेकिन उसमें गलत काम नहीं करना है, जो जरूरी है वो करना है, सिंसियरली करना है, प्रामाणिक हृदय से करना है।
Amazing. तो आपके डॉक्टर बनने के लिए जो जरूरी है उसे कीजिए, और हमेशा सत्संग में रहिए, तो आप अपने मेडिकल कॉलेज, मेडिकल लाइफ में भी एक अच्छी तरीके से भक्ति को अपना पाएंगे। हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है उत्सव चौधरी जी की तरफ से। उत्सव जी पूछते हैं, इज द भगवद गीता दैट बाय एसी भक्ति विदान श्रील प्रभुपाद सेम एज भगवद गीता बाय आदि शंकराचार्य? तो ये पूछना चाहते हैं कि जो एसी भक्ति विदान स्वामी प्रभुपाद की जो भगवद गीता है, क्या वो आदि शंकराचार्य की गीता की तरह ही सेम है? क्या उन दोनों में समानता है?
दो प्रकार के मार्ग हैं भक्ति में। एक मार्ग है भगवान व्यक्ति हैं, परम पुरुष हैं, पर्सन हैं, और एक मार्ग है भगवान निराकार निर्विकार शक्ति है, ब्रह्म है। तो शंकराचार्य जी का जो मार्ग है उसमें वो बताते हैं कि भगवान शक्ति हैं, भगवान निराकार हैं। और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में या पुष्टि मार्ग में या निर्मार्ग संप्रदाय में विष्णु स्वामी के संप्रदाय में बताते हैं कि भगवान व्यक्ति हैं, तो प्रभुपाद जी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हैं। उनके भगवद गीता के तात्पर्यों में और एक्सप्लेनेशन में आपको ये पता चलेगा कि भगवान कैसे परम व्यक्ति हैं, परम ईश्वर हैं, परम पुरुषोत्तम हैं। और शंकराचार्य जी के भगवद गीता और उनके निरूपण में आपको ये पता चलेगा कि भगवान निराकार हैं। और शंकराचार्य जो वो कह रहे हैं वो भी गलत नहीं है, वो एक स्थिति है, एक स्टेज है। जब आप भगवान को नहीं मानते हैं वो तो अश्रद्धालु हो गए। अश्रद्धालु को एक कदम ऊपर उठाएंगे तो पता चलेगा कि भगवान एक शक्ति है, उसके ऊपर उठेंगे तो पता चलेगा भगवान हृदय में स्थित हैं परमात्मा के रूप में, उसके ऊपर जाएंगे आगे तो पता चलेगा कि हृदय में स्थित हैं, निराकार भी हैं, शक्ति रूप भी हैं, लेकिन एक व्यक्ति भी है जिनके तरफ से वो परमात्मा रूप और शक्ति निर्माण होती है। तो ये भक्ति के डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, ऐसे भागवत में लिखा है। तो ब्रह्मेति जो है वो शंकराचार्य जी बता रहे हैं, परमात्मा जो है वो मध्वाचार्य और रामानुजाचार्य इसके बारे में विवरण करते हैं, अगली स्थिति है। और भगवान के विषय में जो स्थिति है वो चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं, व्यास देव जी कर रहे हैं। तो इसमें गलत कुछ नहीं है। जैसे पहली कक्षा में हम मैथ सीखते हैं तो वो एक स्तर पर है, दसवीं कक्षा में मैथ सीखते हैं तो अलग स्तर पर, ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, उसके अंदर बाकी सारे विषय हैं। पीएचडी में जाएंगे तो मैथ्स और सब कुछ अलग स्थिति में हो जाता है, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री हायर लेवल पर हो जाता है। मैथ्स तो मैथ्स ही है लेकिन मैथ्स के अंदर भी अलग अलग स्तर होते हैं। वैसे ये भी कोई नीचा और ऊपर का नहीं है, ये नेचुरल प्रोग्रेसिव स्तर है। इसमें हमारा पूरा आदि शंकराचार्य को हमारा पूरा प्रणाम है क्योंकि वो शंकर जी के अवतार हैं, भगवान के आदेश से ही वो आए थे शंकराचार्य बनकर, उनके आदेश से उन्होंने ये प्रचार किया था डेवलपमेंटल स्टेज को निर्माण करने के लिए। ये प्रोग्रेसिव स्टेज है। तो प्रभुपाद जी की भगवद गीता में भगवान पुरुषोत्तम परम पुरुषोत्तम कैसे हैं, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कैसे हैं, इसके बारे में सर्वश्रेष्ठ जो जानकारी है वो उन्होंने दी है। वो केवल प्रभुपाद जी की गीता में नहीं है, वल्लभाचार्य के निरूपण में भी है, निम्बाराचार्य के निरूपण में भी है, वो सब बोनाफाइड संप्रदाय है, उसमें से एक प्रभुपाद जी का संप्रदाय है।
हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है नरेंद्र हकू जी की तरफ से। ये पूछते हैं कि इस्कॉन डिवोटीज चैंट हरे कृष्णा महामंत्र, हाउएवर इन गीता एंड अदर रिलीजियस बुक इट इज टोल्ड गायत्री मंत्र इज मोस्ट पावरफुल एंड महामंत्र, सो व्हाई शुड वी चैंट हरे कृष्णा मंत्र। पूछना चाहते हैं कि बहुत सारे बुक्स में, बहुत सारी गीता में भी और बहुत सारी आध्यात्मिक बुक्स में कहा गया है कि गायत्री मंत्र सबसे ज्यादा पावरफुल मंत्र है और महामंत्र है, तो हम इस्कॉन डिवोटीज हरे कृष्णा मंत्र को क्यों जप करते हैं और उसको महामंत्र क्यों कहते हैं?
गायत्री मंत्र जो है ना, उसको जप करने के लिए कुछ योग्यताओं की आवश्यकता होती है। जैसे मुझे, अगर मैं MBBS हूं और मुझे ब्रेन सर्जरी करनी है तो मुझे कुछ क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है। मुझे आगे जाकर MS करना होगा, फिर MCH करना होगा, फिर मैं वो ब्रेन सर्जरी कर पाऊंगा। लेकिन MBBS होकर मैं ब्रेन सर्जरी नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास वो क्वालिफिकेशन और लाइसेंस भी नहीं होगा। तो गायत्री मंत्र ये बहुत पावरफुल चीज़ है, इसमें कोई वाद ही नहीं है, निर्विवाद है ये। लेकिन गायत्री मंत्र का पूरा परिणाम आपको अगर चाहिए तो आपको पहले बहुत सारी तैयारियां करनी होगी। उसमें प्रथम दीक्षा हरिनाम, भगवान नाम के अनुग्रह आपको लेना होगा और भगवान नाम का जप करके आपको मन की ब्राह्मणिकल क्वालिटीज जो भगवान ने गीता में बताई है, समस्त समस्त सपस चौचम शांति मार्जम एवच, वो सारे ब्राह्मणों के गुण आपको अपने आप में कल्टीवेट करने होंगे, विकसित करने होंगे, और तब जाकर आप गायत्री मंत्र आपको प्राप्त होगा ब्राह्मण दीक्षा के रूप में, उपनयन के रूप में। फिर वो ब्राह्मण दीक्षा के बाद आप गायत्री मंत्र जप करेंगे तो आपको पूरा 100% उसका लाभ मिलेगा। नहीं तो करेंगे तो लाभ मिलेगा लेकिन 2% मिलेगा, 10% मिलेगा। इट्स वेरी सिंपल। तो हरे कृष्ण मंत्र हम क्यों करते हैं? क्योंकि हरे कृष्ण मंत्र ये मूलभूत हमारा स्थायी भाव है भक्ति मार्ग का। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, ये कलि संतरण उपनिषद में भी कहा गया है कि भगवान का नाम ही सर्वस्व है। प्रभु राम का नाम, प्रभु कृष्ण का नाम, भगवान का कोई भी योग्य नाम, ये सर्वस्व है। उसके आगे भगवान नाम को अधिक शुद्ध करने के लिए हम गायत्री जप करते हैं। हमारे संप्रदाय में भी पहले हरिनाम दीक्षा होती है, हम कई साल तक हरे कृष्ण महामंत्र का कई घंटों तक जप करते हैं, फिर गुरुजी हमारी परीक्षा लेते हैं, हमारे आपको परखते हैं कि हमारी कितनी प्रगति हो चुके हैं, कितने ब्राह्मणों के गुणों को हम अपना चुके हैं जीवन में व्यवहार में, फिर हमारा रिकमेंडेशन होता है, फिर हमारी ब्राह्मण दीक्षा होती है, बहुत बड़ा सेरेमनी होता है, उसमें गुप्त मंत्र और गायत्री मंत्र गुप्त रूप में और प्राप्त होते हैं। गायत्री मंत्र एक नहीं है, गायत्री मंत्र अनंत प्रकार के हैं, कई प्रकार के गायत्री मंत्र हमको मिलते हैं, उसमें से एक मंत्र जो आप जानते हैं वो सबको पता है, वो लाउड स्पीकर में भी गाया जाता है, उसके अलावा भी बहुत सारे गायत्री मंत्र होते हैं, तो सूर्य गायत्री है, ब्रह्म गायत्री है, देवी गायत्री है, और गोपाल गायत्री है, बहुत प्रकार की गायत्री है, चैतन्य गायत्री है, काम गायत्री है, ऐसे बहुत प्रकार की गायत्री है। तो ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा गहन और सूक्ष्म विषय है, इतना सुपरफिशियल नहीं है वो। तो पहले हमें भगवान नाम का अनुग्रह लेकर अपने आत्मा की तैयारी करनी होगी। एक विशिष्ट स्थिति में गुरु महाराज आप पर अनुग्रह करेंगे, आपको गुप्त गायत्री मंत्र देंगे अपनी शक्ति के साथ, फिर वो जब हम त्रिकाल संध्या के रूप में करते हैं तो उसका इतना सुंदर परिणाम होता है। मेरी ब्राह्मण दीक्षा 1987 में हुई थी, 1987, और मैंने इसका बहुत गहराई से अनुभव किया है कि ब्राह्मण दीक्षा लेने के पश्चात जो ग्राम गायत्री मंत्र का जब मैंने किया उसका परिणाम क्या है। नौवीं कक्षा में मेरा घर में भी ब्राह्मण दीक्षा हुई थी, क्योंकि मैं गौड़ सारस्वत ब्राह्मण हूँ उड़पी का, मेरे घर में भी मेरे घर के ट्रेडिशन के अनुसार ब्राह्मण दीक्षा हुई थी और गायत्री मंत्र जनी प्राप्त हुआ था। लेकिन उस समय मैं फिश खाता था, अंडे भी खाता था, लेकिन जब मैं इस्कॉन में आया और ये सब कुछ नियम पालन करके मेरी दोबारा ब्राह्मण दीक्षा हुई, तब जाकर जो मुझे अनुभव प्राप्त हुए ना, वो अवर्णनीय अनुभव है, इनएक्सप्लेनेबल, आई कैनॉट एक्सप्लेन टू यू इन वर्ड्स। तो इसलिए गायत्री मंत्र का अपना स्थान है हमारी भक्ति में, हरे कृष्ण महामंत्र का अपना स्थान है। लेकिन एक शास्त्र ये भी कहता है कि अगर समझो किसी कारण ब्राह्मण दीक्षा नहीं हुई और गायत्री मंत्र नहीं प्राप्त हुआ गुरु के माध्यम से, तो हरे कृष्ण मंत्र भी आपको, श्री राम जय राम जय राम का मंत्र भी आपको भगवान तक पहुंचा सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अनिवार्य नहीं है, लेकिन होगा तो बहुत अच्छा है और लाभ ज्यादा होगा, आपका अधिक सूक्ष्म रूप में जप होगा और केंद्र स्थान में आपका जप आपका बहुत सूक्ष्म और बहुत पावरफुल जप होगा गायत्री मंत्र के प्रभाव से। तो हम सब लोग त्रिकाल संध्या करते हैं, सुबह सूर्यास्त सूर्योदय के समय, मध्यान्ह में और संध्या के समय, हम तीन तीन समय पर ये गायत्री मंत्र का गुप्त रूप में जप करते हैं।
तो हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं बट हमारे पास समय का बहुत अभाव है, तो मैं अपने दर्शकों से माफी चाहूंगा अगर हम आपके क्वेश्चंस ना ले पा रहे हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है अमित अग्रवाल जी की तरफ से, ये पूछ रहे हैं कि क्या मानव सेवा माधव सेवा से बड़ी नहीं है।
माधव सेवा, माधव की चेतना में की हुई मानव सेवा श्रेष्ठ है। केवल मानव की शरीर के सर पर की हुई सेवा श्रेष्ठ नहीं है, मानव की सेवा श्रेष्ठ तब होगी जो माधव चेतना में की जा रही हो। जैसे हमारी भाषा में कहते हैं ना, कृष्ण कॉन्शियसनेस में जब मानव सेवा करते हैं, हम लोग तो धुआंधार मानव सेवा कर रहे हैं, गांव गांव में कैंप लगाते हैं, सैकड़ों कैंप लगाते हैं, कितने लोगों को नेत्रदान दे रहे हैं, कितने लोगों को मेडिकल इलाज कर रहे हैं, फ्री में करते हैं पूरा गांव गांव में जाकर, लेकिन केवल शरीर के उद्धार के लिए नहीं, शरीर के साथ में आत्मा और मन, देह मन और आत्मा की वास्तविक आवश्यकताओं की अनुभूति के साथ में जब सेवा करते हैं तो वो श्रेष्ठ सेवा हो जाती है। लेकिन माधव सेवा और मानव सेवा की तुलना ही नहीं हो सकती है, माधव सेवा अपनी जगह पर है, मानव सेवा अपनी जगह पर है, उनको दोनों को तुलना करने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने अपने स्तर पर है। मन की सेवा साइकोलॉजिकल सर्विस एक एक स्तर पर है, बौद्धिक सेवा एक स्तर पर है, शरीर के रोगों की सेवा एक स्तर पर है, देयर इज नो कंपैरिजन। लेकिन जब माधव चेतना कृष्ण चेतना में हम मानव सेवा करते हैं, आत्मा और मन की सेवा के साथ जब देह की सेवा करते हैं, तो वो सर्वश्रेष्ठ सेवा बन जाती है, नो सेंटिमेंट्स अबाउट इट, ये सैद्धांतिक बात है। इसलिए हमने आपको पहले से बताया, शुरू से जब हम कैंप भी करते थे, शिविर लगाते थे, उसमें भी हम लोग शरीर के लिए प्रसाद बांटते थे, आत्मा के लिए कीर्तन करते थे, और फिर शरीर के लिए व्याधि को इलाज करते थे। थ्री थिंग्स टुगेदर, वैद्यकीय इलाज, प्रसादम और हरिनाम कीर्तन, तब वो मानव सेवा सर्वश्रेष्ठ हो जाती है, उस मानव की आत्मा का कल्याण भी हो जाता है।
Amazing. तो ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि जब भी हम मानव सेवा के बारे में सोचे तो उसमें हमारा जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, जो हमारी भक्ति है, उसका एक अहम पार्ट होनी चाहिए। कभी मानव सेवा श्रेष्ठ मानी जाती है, और ये दो अपनी अपनी जगह पे अलग चीजें हैं, बट अगर आपको मानव सेवा करनी है तो भक्ति भाव से अगर करेंगे तो श्रेष्ठ मानी जाएगी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है चेतना श्री जी की तरफ से। ये पूछ रहे हैं कि आई एम फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट एंड आई विल बी डूइंग माय इंटर्नशिप इन 2 months। आई लव टू टेक ओबीजी इन एमडी। ओके, आई एम फोर्स टू डू अबॉर्शंस एंड गिव कॉन्ट्रासेप्टिव्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। डू आई गेट बैड कर्मा?
यस सर, यस यू विल गेट बैड कर्मा इफ यू डू दिस, नो डाउट अबाउट इट।
मैं दर्शकों के लिए इसका हिंदी अनुवाद करना चाहूंगा कि ये हमसे पूछ रही है कि ये एक फाइनल ईयर की स्टूडेंट है और ये अभी इंटर्नशिप कर रही है, और जहां तक मुझे समझ आ रहा है ये अपने करियर में या अपने इंटर्नशिप में गर्भपात कराती है जिसमें कि ऑबर्शन कराती है। तो ये पूछना चाहती है कि क्या मुझे अपने प्रोफेशन में ये कराने की वजह से बुरा कर्म, बैड कर्म मिलेगा? तो अब बताइए।
तो बुरा कर्म जो गर्भपात का है वो आप प्रोफेशन में करेंगे या बाहर करेंगे या किसी की प्रवृत्ति से करेंगे, बुरा कर्म करने का असर बुरा ही होता है। तो ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है और कई मेडिकल स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कायदा जो है भारत का, उसमें आप धार्मिक भावनाओं के आधार पर गर्भपात करने को विरोध कर सकते हैं। ये आपको अधिकार है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एमडी गायनेकोलॉजी करने के लिए गर्भपात आवश्यक नहीं है। वो एक छोटा सा अंग है उस पूरे गर्भपात सॉरी एमडी गायनेकोलॉजी के अभ्यासक्रम का। तो मेरे कई विद्यार्थी, मेरे कई कलीग्स ऐसे हैं जिन्होंने योजना पूर्वक अपने डिपार्टमेंट हेड्स को बताया कि सर मैं सब कुछ करूंगी या करूंगा, लेकिन गर्भपात करना मेरे धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध है, ये मुझे इजाजत नहीं देता है, अनुमति देता नहीं है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। बाकी आप कुछ भी कह कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी आप जीत जाएंगे अगर आप धार्मिक भावना के आधार पर इसको विरोध करेंगे। मेरे कई कलीग्स हैं जो मेरे साथ में थे, मेरे क्रिश्चियन कलीग हैं डॉक्टर सुजन पिंटो जो अभी बॉम्बे के बड़े अस्पताल में डीन हैं, वो मेरी कलीग थी। मेरे बाद में मेरे जूनियर्स, मेरे विद्यार्थी कई थे जो एमडी गायनेकोलॉजी में गए, उनको यही प्रेरणा दी कि आप विश्वास के साथ कहिए कि हम लोग गर्भपात के अलावा बाकी सब कुछ करेंगे, और आपको थोड़ा कष्ट देंगे वो, लेकिन आपको रोक नहीं सकते। और बाकी सारा काम आप दिलो जान से बहुत तीव्रता से ध्यान लगाकर कीजिए, प्रामाणिकता से कीजिए, आप यशस्वी होंगे। लेकिन जब आप ये गर्भपात असिस्ट करेंगे या खुद करेंगे या रजिस्ट्रार बन के करेंगे तो भ्रूण हत्या का पाप लगेगा। और भ्रूण हत्या का पाप जो है ना, भ्रूण हत्या मतलब गर्भपात, जो गर्भ के रूप में हत्या करना पेट के अंदर, उसको भ्रूण हत्या कहते हैं। शास्त्र में कहीं भी भ्रूण हत्या का इलाज नहीं है। That person will not see the light of the day, ऐसे कहा गया है शास्त्र में। उसका मतलब क्या है? उस व्यक्ति का भी बार बार लगातार एबॉर्शन होता रहेगा, तभी ही सूरज का उस रोशनी उसको दिखाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि गर्भ में अंधकार होता है, गर्भ में उसकी मृत्यु बार बार होती रहेगी, ऐसा परिणाम शास्त्र में लिखा गया है। तो हमें यह ज्ञान होना आवश्यक है कि डॉक्टर बनना अच्छा है, लेकिन डॉक्टर बनने का मतलब ये नहीं कि जो शिशु मानव के रूप में मनुष्य के गर्भ में आकर अपना आश्रय ले चुका है, मनुष्य बनकर जीवन का कल्याण कर सकता है, मनुष्य जीवन की प्राप्ति करके उसका प्रगति का मार्ग ही आप तोड़ रहे हो, उसके उसका वध करके असहाय अवस्था में, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। एक सक्षम मेरा आपका वध करेंगे तो मैं कुछ प्रतिकार करूंगा, मेरे पास कुछ शक्ति है प्रतिकार करने की, लेकिन गर्भ अवस्था बहुत असहाय होती है, और असहाय अवस्था में छोटे से गर्भाशय में एक तरफ से नली डालकर उसको तोड़ के बाहर निकालते हैं, ये सबसे जघन्य अपराध है। जो 4 और 3 आगे जो है उसके अंदर ये भी आता है। इसलिए किसी भी कीमत पर डॉक्टर को एमडी गायनेकोलॉजी करते समय इसको नहीं करना चाहिए। शुरू से ही आप अपने बॉस से क्लियर कर लीजिए, यूनिट हेड से, कि सर मैडम मैं नहीं ये कर सकता, मैं नहीं ये कर सकती। थोड़ा विरोध होगा आपको, लेकिन आपको निश्चय रखना है और 6 टर्म्स आपके पूरे करने हैं इसी निश्चय के साथ में, और फ्लाइंग कलर्स में आपको एमडी पास करना है। और बहुत लोगों ने किया है, मैं आपको मेरे बैच की बात कर रहा हूं, मतलब 1983 की बात कर रहा हूं, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं। सफलता आपके निश्चय में है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी व्यवसाय में हो, आप डॉक्टर हो या कुछ भी करते हो, आप जिस भी तरह का कार्य करें, ये जो 7 पाप बताए गए हैं और जो 4 मेन मूल पाप बताए गए हैं, इसमें ना आए और आप अगर इस चीज को अपनी पूरी इच्छा से पूरे डिजायर से अगर फॉलो कर पाएंगे तो जरूर भक्ति में आगे बढ़ेंगे। और आज एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एक डॉक्टर ने एक डॉक्टर के स्टूडेंट को दिया है कि इसको किस तरह से फॉलो करना चाहिए। दिस इज ब्यूटीफुल। तो हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है विनीत परदी जी की तरफ से। ये पूछते हैं कि हरे कृष्ण प्रभु जी, क्या गौड़ीय संप्रदाय और मध्वाचार्य के मध्व संप्रदाय की फिलॉसफी एक ही जैसी है या इनमें कुछ भेद है?
मध्वाचार्य से ही निकला हुआ हमारा संप्रदाय, यानी हमारे संप्रदाय के जो पहले वाले आचार्य हैं वो मध्वाचार्य हैं। जैसे भगवान कृष्ण, ब्रह्मा जी, उसके बाद में नारद जी के शिष्य व्यासदेव जी, व्यासदेव के शिष्य मध्वाचार्य, और उसके आगे परंपरा बढ़ती जाएगी। फिर उसमें माधवेंद्रपुरी आएंगे, ईश्वरपुरी आएंगे, चैतन्य महाप्रभु आएंगे। उस तरह से वो ब्रह्म, मध्व और गौड़ीय संप्रदाय बन जाएगा। तो हमारा सिद्धांत एक ही है, लेकिन मध्वाचार्य जब आए थे तभी मध्वाचार्य ने द्वैतवाद को प्रचार किया था। उनके पहले सबसे पहले बुद्ध आए थे और बुद्ध जी ने वेद को ही नष्ट कर दिया था, मतलब वेद को ही निगेट कर दिया था, क्योंकि उसमें वेद के नाम पे इतनी जानवर की हत्या हो रही थी। उसको जानवर की हत्या रोकने के लिए उन्होंने वेद को ही निकाल दिया और फिर अपना सिद्धांत प्रकट किया। उसके बाद भगवान ने शिव जी को भेजा शंकराचार्य बनकर, ब्रह्मवाद यानी निर्विकारवाद जिसे मैंने पहले बताया वो स्थापन किया गया। उसके बाद भगवान ने वायुदेव को अवतार लेकर भेजा मध्वाचार्य के रूप में, कि भगवान और जीव ये दो चीजें अलग अलग हैं, अलग अलग अस्तित्व रखती हैं, ये समझाने के लिए मध्वाचार्य को भेजा। तो मध्वाचार्य की मूर्ति हमेशा ऐसी होती है, दो, यानी भगवान और जीव दोनों स्वतंत्र अस्तित्व में रहते हैं और दोनों के अंदर रिश्ता है और दोनों कभी एक नहीं होते, ये उन्होंने बताया। उसकी आगे जाकर रामानुजाचार्य ने फिर उसको इलेबोरेट किया, विशिष्ट द्वैत सिद्धांत। फिर चैतन्य महाप्रभु ने आकर बताया कि हम भगवान के अंश हैं और भगवान के सारे गुण हमारे अंदर हैं, और हमारे अंदर भगवान की समानता भी है और भेद भी है। उसको क्या कहते हैं? अचिंत्य भेद अभेद तत्व, यानी एक है अभेद, जो शंकराचार्य ने बताया कि हमारे अंदर कोई भेद नहीं है, और मध्वाचार्य ने बताया कि भेद है, लेकिन दोनों को मिलाया चैतन्य महाप्रभु ने और वो सिद्धांत बताया अचिंत्य भेदाभेद तत्व, यानी हम एक ही साथ में भगवान के समान है भी और भगवान के समान है नहीं भी, गुण में समान और क्वांटिटी में डिफरेंट है हम लोग। तो सिद्धांत तो उसी रास्ते में है जैसे कोई पांचवी कक्षा में है, दसवीं कक्षा में है और ग्रेजुएशन में है, उसी प्रकार से ये डेवलप हुआ है, इसकी उत्क्रांति हुई है, विकास हुआ है सिद्धांत का। हाँ, नो वेद के लेकर, ब्रह्मवाद से लेकर, द्वैतवाद से लेकर, विशिष्ट द्वैतवाद, फिर अचिंत भेदाभेद तत्व। दिस इज अ डेवलपमेंटल प्रोग्रेसिव स्टेज ऑफ रियलाइजेशन ऑफ भक्ति, साक्षात्कार की ये विकसित उत्क्रांति मार्ग है।
अमेजिंग। तो हम समय के अभाव की वजह से अपने कुछ लास्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है शीतालंकी राधा देवीदास जी की तरफ से। पूछते कि हाउ टू स्टे फोकस्ड ऑन आवर गोल एंड स्टेप्स टू प्रोग्रेस स्पिरिचुअलिटी। तो पूछना चाहते हैं कि हम अपने गोल की तरफ, जो हमारा लक्ष्य है, उस पे हम अपना ध्यान कैसे केंद्रित करें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए।
जैसे मैंने कहा ना, कितने भी गोल घूमेंगे तो आप पाएंगे केंद्र स्थान पर, वो केंद्र स्थान है सत्संग। अच्छा संग रखिए और भक्तों के संग में भी उन भक्तों का संग रखिए जो अपने लक्ष्य की ओर पूरी तरह केंद्रित हैं, फोकस्ड हैं, ऐसे लोगों का संग रखिए। बाकी सारे चीजें त्याग कर दीजिए। आनुकूल्यस्य संकल्पो प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। भक्ति मार्ग में लक्ष्य क्लियर होना चाहिए और लक्ष्य के लिए अनुकूल संग है वही करना चाहिए। भक्तों में भी जो भक्त से हमेशा शेयर मार्केट की बात करते हैं या और कुछ बातें करते हैं, उनका भी आपको संग नहीं करना है। भक्तों में भी आपको चुनना है कि कौन केंद्रित है भगवान के विषय में, केंद्रीभूत है, फोकस्ड है, उनका संग करना है और लगातार अपने मार्ग के अनुकूल जो कार्य है वो करते रहना है। यानी क्या? नियमित रूप से जप करना, भगवान का संग करना, ग्रंथ पढ़ना, भगवान के विग्रहों की पूजा करना, धाम का निवास जैसे भी हो सके नियमित रूप से करना, तुलसी की सेवा करना और इस विषय पर ही चिंतन करना, ये आवश्यक है बहुत। अगर आप मुझे पूछेंगे मैं क्या करता हूं, मैं दिन रात ये कोशिश करता हूँ कि मेरा मन भगवान में लगा रहे, किसी भी चीज में डाइवर्ट ना हो, कभी कभी हो जाता है, लेकिन प्रयास पूर्वक मेरा मन मैं फोकस रखता हूँ सत्संग के आधार पर। आपको बताना चाहूंगा जरूर जो आप कर सकते हैं, सुबह पहले से जब उठता हूं मैं तो लाइट लगाने के पहले इसको ऑन करता हूँ। आप सोचेंगे अच्छा आप मोबाइल देखते हो पहले, नहीं, उसमें पहले यूट्यूब में गुरु जी का कथा ऑन करता हूँ, फिर लाइट ऑन करता हूँ और कथा ऑन करके ही मैं बाथरूम जाता हूँ और बाथरूम का पूरा समय मैं एक या दो कथा प्रभुपाद जी की या गुरु जी की सुनता हूँ। जब तक मैं कपड़े पहनकर मेरा गायत्री जप करने के लिए न बैठ जाऊं तब तक मैं ये कथा सुनता हूँ, उसके बाद पूरा जप करता हूँ और कथा सुनकर फिर मैं मेरे काम पे जाता हूँ और फिर कथा भी करता हूँ, कथा सुनता भी हूँ, शाम के आता हूँ फिर भगवान का चिंतन करता हूँ और प्रार्थना करके फिर निद्रा ग्रहण करता हूँ। यही विचार करता हूँ कि निद्रा में भी बुरे स्वप्न ना आए, भगवान के विचार के स्वप्न आए तो भगवान के आए, उसके विचार के आए, उनके सेवा के आए, या तो शांत निद्रा हो, ऐसा विचार पूर्वक मैं दिन मेरा गुजारता हूँ। एंड आई लाइक दिस क्वेश्चन वेरी मच, हाउ टू रिमेन फोकस्ड, बिकॉज हर व्यक्ति को फोकस के बिना कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है, धन भी फोकस के बिना प्राप्त नहीं होता है, डॉक्टर बनना भी है फोकस के बिना नहीं हो सकता है, जो भी प्राप्त करना है फोकस की आवश्यकता है और ये सर्वोच्च प्राप्ति है भगवान, इसके लिए फोकस तो अति आवश्यक है। ये न के न प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयेत, कुछ भी हो जाए कृष्ण के ऊपर ध्यान होना चाहिए, उसके लिए अपने संग को चुनो, अपने दिन का समय कैसे गुजारना है उसका प्लानिंग बनाओ, बिना प्लानिंग का दिन मत गुजारना, पूरा दिन पूरा महीना पूरा साल पूरे योजना के साथ में गुजारना, लक्ष्य की ओर अनुकूल गुजारना। हरे कृष्णा।
अमेजिंग, तो हम अपने लास्ट टू क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, हाउ टू डील विद डिप्रेशन। विवेक वाघचौर्य जी पूछ रहे हैं कि हम डिप्रेशन से कैसे डील कर सकते हैं।
देखिए डिप्रेशन का जो मैं उत्तर दूंगा ना, हो सकता है यू विल गेट शॉक्ड और यू विल बी अमेज्ड, लेकिन डिप्रेशन ये एक अहंकार का परिणाम है। अभी आपको शॉक लगेगा सुनकर ही, लेकिन डिप्रेशन कब होता है? डिप्रेशन जब मुझे जैसी चीजें चाहिए थी जीवन में, मेरे एक डिग्निटी या पर्सनालिटी या मेरे स्थिति के अनुसार, वो जब नहीं होती है तो उस सत्य को मेरा ईगो स्वीकार नहीं कर सकता है। क्यों ऐसा होता है? Why it is so? मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? तो जब मेरी स्थिति जीवन की जो अप्रिय स्थिति है मेरे अहंकार से टकराती है तो वो डिप्रेशन के रूप में प्रकट हो जाती है। और अगर मैं नम्र हूं तो मैं उस अप्रिय स्थिति को एक इनएविटेबल अनिवार्य स्थिति के रूप में स्वीकार करूंगा तो मुझे डिप्रेशन नहीं आएगा। इस पर आप गहरा विचार कीजिए, बहुत बहुत मैं आपको गहरी बात बता रहा हूं। स्वीकार करने में कष्ट होगा आपको शुरुआत में, लेकिन आप उसमें गहराई में विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं उस चीज को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं हूं, मेरा ईगो मानता ही नहीं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो हो रहा है। तो जब वो होते ही रहता है और मैं स्वीकार करने में क्या कहता हूं अनसक्सेसफुल हो जाता हूं, तो उसका रूपांतर डिप्रेशन के रूप में हमारे जीवन में प्रकट हो जाता है। इसलिए देखिए डिप्रेशन का अनुभव तो मैंने भी मेरे जीवन में किया है, लेकिन जब नम्रता को स्वीकार किया ना डिप्रेशन भाग गया, और उसका भी एक रहस्य है, वो भी गुरु की कृपा से ही वो नष्ट हुआ। इसलिए जीवन में तो अप्रिय घटना होने वाली है, हमारे मन के विरुद्ध, हमारी योजना के विरुद्ध, हमारी अपेक्षा के विरुद्ध। ये तो भौतिक जीवन का मतलब क्या है? यहाँ पर तो सब अपेक्षा योजना सबके विरुद्ध ही घटनाएं घटती रहती है। क्या हमारे मन से होता है? 100 में से एक भी चीज मन से नहीं होती है, 99 चीजों का मन के खिलाफ मन के विरुद्ध हमको स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन हर समय रोते बैठेंगे, हर समय डिप्रेस होंगे तो जीवन चलेगा कैसे? तो इसको स्वीकार करने की और पचन करने की भी एक, डाइजेस्ट करने की भी एक शक्ति होनी चाहिए ना, वो केवल नम्रता से आती है। तो नम्रता हम स्वीकार करेंगे ना कि यस ये भगवान की इच्छा है, ये मेरे कर्म का परिणाम है, आई एक्सेप्ट इट, तो आप डिप्रेस नहीं होंगे। लेकिन जूझते रहेंगे ना तो बार बार डिप्रेस होते रहेंगे। इसलिए जीवन में आने वाले स्थितियों से जूझना मत, उनको स्वीकार करना एक सत्य के रूप में और उसके अनुकूल होकर चलना आगे, और संघर्ष बंद नहीं करना। प्रतिकूल घटना होने के पश्चात भी अपना संघर्ष जारी रखना, लेकिन चीजों को स्वीकार करते हुए आगे चलना। तो डिप्रेशन आपके जीवन में कभी भी नहीं आएगा। आता ही है वो मिथ्या अहंकार की वजह से। जब मिथ्या अहंकार की स्थिति में आप इलाज करेंगे तो डिप्रेशन कभी भी नहीं आएगा।
तो एक बहुत ही गहरी बात आज हमें पता चली कि अगर हम किसी भी सिचुएशन में और अगर किसी भी परिणाम को अगर हम अपने जीवन में नम्रता से एक्सेप्ट कर ले तो ये डिप्रेशन नाम की बीमारी हमें कभी नहीं आएगी। तो हम बढ़ेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हम दर्शकों से माफी चाहेंगे कि आप इतने सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं बट समय के अभाव की वजह से हम सारे क्वेश्चंस नहीं ले पाएंगे। तो हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि आ रहा है शशिकांत त्रिपाठी जी की तरफ से। ये पूछते हैं कि पूरे परिवार को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में कैसे लगाकर कैसे परम सत्य की प्राप्ति करें।
सबसे पहले भगवान के मंदिर को घर में स्थापित करें, चाहे वो विग्रह के रूप में हो या फोटो के रूप में हो। फोटो हो तो वो जो विग्रह है उनको फोटो होना चाहिए, पेंटिंग नहीं होना चाहिए। भगवान के विग्रह का फोटो हो या भगवान के विग्रह हो, जो भी आपको हो सकता है वो जो पसंद है, वो या तो गौर निताई हो या राधा कृष्ण हो या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हो या हनुमान जी हो, जैसे राम भगवान हो। पहले घर के केंद्र स्थान में, प्रमुख स्थान में उनको स्थापन कीजिए। फिर उनका कार्यक्रम दिन में तय कर लीजिए कि घर में सुबह इस बजे आरती करनी है, शाम को इतने बजे आरती करनी है, इतने प्रकार के भोग लगाने हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर भगवान को अर्पण करना है, ये उत्सव मनाएंगे जन्माष्टमी का, रामनवमी का। हाँ, और घर में किसी प्रकार का अभक्ष्य भोजन न आए, ये ध्यान रखना। कोई घर में ऐसी क्रिया न हो जो भक्ति के प्रतिकूल हो। और ऐसा वातावरण, जैसे मेरा घर है, 24 घंटे हमारे घर में स्पीकर्स पे भगवान के नाम का कीर्तन चलता है। ऐसा सिस्टम बना के रखा है कि वो 24 आवर ऑन रहता है, हॉस्पिटल में भी ऑन रहता है 24 आवर्स। ऐसी आदत हो गई कि जब बंद होता है ना कभी बैटरी या किसी चीज से या पावर खत्म होने से तो अस्वस्थ लगता है कि समथिंग इज मिसिंग। वो कीजिए। और घर में नियमित, अभी तो कोरोना है इसलिए नहीं हो सकता है, लेकिन बाद में या पहले होता था, बाद में होगा कोरोना के पश्चात, नियमित रूप से सत्संग आयोजित करना, किसी वरिष्ठ भक्त को बुलाकर नियमित रूप से घर में आपके कुछ चार लोगों को बुलाकर, मेहमानों को और नेबर लोगों को बुलाकर एक छोटा सत्संग आयोजित करना नियमित रूप से। कोई नहीं आए तो खुद करना नियमित रूप से। इससे आपके घर का वातावरण पवित्र होगा। और घर में कोई भी वस्तु भगवान को भोग लगाए बिना, जो मंदिर आपने बनाया है उसमें भोग लगाए बिना, तुलसी रख के भोग लगाए बिना भोजन नहीं करना, उसका ग्रहण नहीं करना उसको। और एक प्रश्न लोगों को होता है, वो बाहर से बिस्कुट लाते हैं, कभी को रेडीमेड चकली लाते हैं, कुछ चूड़ा लाते हैं, कोई अभी लाते हैं लोग, वो भी वस्तु भगवान को बाहर से लाई हुई भी भोग लगाए बिना उसको ग्रहण नहीं करना। अपने मुंह के अंदर केवल प्रसाद ही आपको उतारना है और प्रसाद ही ग्रहण करना है, हर बनी चीज को भगवान को भोग लगाकर ग्रहण करना है। ये सब चीजें करने से क्या क्या बताया मैंने, भगवान का मंदिर, भगवान की सेवा, सत्संग, प्रसाद ग्रहण, शास्त्र का अध्ययन, यानी सत्संग के रूप में आप करेंगे शास्त्र का अध्ययन, ये करने से आपके घर के लोग सब लोग भक्त बनना आरंभ हो जाएगा। अब कोई विरोध भी करता है, कोई अश्रद्धालु भी है, उसको प्रसाद आप ग्रहण कराने के लिए देते रहना हमेशा, चाहे कोई बालक हो नहीं मानता हो, या कोई दादाजी हो नहीं मानते होंगे, या पिताजी मानते नहीं, या माताजी नहीं मानते, होता है घर में, सबको आप प्रसाद दे देना भोजन के लिए, नाश्ता लंच डिनर के रूप में। जब कोई बाहर से आएंगे वृंदावन से, सबको जरूर वहां का महाप्रसाद देना। धीरे धीरे आपको परिवर्तन होते हुए नजर आएगा। आपका अगर किचन ये पवित्र हो गया कि किचन में कोई अभ्यक्ष वस्तु नहीं आ रही है, अनियन गार्लिक नहीं आ रहा है, नॉनवेज नहीं आ रहा है, खाली शाकाहारी वस्तु आ रही है और भोजन बन रहा है और वो भगवान को अर्पण करके अगर ग्रहण किया जा रहा है, तो आपके घर में विद्युत गति से प्रगति होगी भक्ति मार्ग में। और बाहर का भोजन ना करें, अभी बहुत आपको लगेगा बाप रे कितनी मुश्किल बात है, हाँ, लेकिन बाहर का भोजन करने से बाहर के लोगों की चेतना, जो बनाने वाले हैं उनकी चेतना का असर आपके हृदय में होता है। क्योंकि अन्न में दो चीजें होती है, एक बाह्य रूप यानी पिज्जा है या भेलपुरी है जो भी कुछ आइटम है, और एक उसकी चेतना, ये सूक्ष्म भाग है। दोनों भागों का हमारे ऊपर असर होता है, वो वस्तु का असर शरीर पे होता है, चेतना का असर आत्मा और मन पर होता है। और अगर भक्ति में प्रगति करनी है आपको, तो आपको अपनी चेतना को भी शुद्ध रखना है, इसलिए शुद्ध आहार, फिर शुद्ध मन, शुद्ध आत्मा, फिर प्रगति तेजी से। हरे कृष्णा। और नियमित रूप से साल में एक बार यात्रा में जाना है आपको, तीर्थ स्थान में, वृंदावन मथुरा जगन्नाथपुरी, मायापुर, नासिक, हाँ जगन्नाथपुरी, द्वारका, जयपुर, श्रीरंगम, एक बार सब कुछ छोड़ के आपको जाना है, भगवान को शयन कराकर यात्रा में जाना है, सत्संग करके लौट के आना है, फिर अपना कार्य शुरू करना है। ये करने से फिर सारी सारा परिवार ऐसे दौड़ेगा ना विद्युत गति से कि आप भी हैरान हो जाएंगे, मैं पीछे रह गया सब आगे चले गए, ऐसा आपको लगेगा।
अमेजिंग। तो इतनी प्यारी तरीके से विश्वरूप जी ने अभी हमें बताया कि किस तरीके से हम अपने पूरे परिवार को इतनी सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करके भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो विश्वरूप जी, मैं आपसे हमारे ऑडियंस के लिए एक आखिरी मैसेज लेना चाहूंगा, तो आप अपना मैसेज प्लीज ऑडियंस को दीजिए।
मैसेज देने के पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि हरे कृष्णा टीवी इतना सुंदर कार्य कर रहा है, आपको घर बैठे 50 संतों का संग प्राप्त हो रहा है, वो विविधता के रूप में, उसमें बच्चों के खेल भी हैं, उसमें प्रवचन भी है, उसमें कुकिंग के पूरे क्लासेस भी हैं, क्या नहीं है उसके अंदर, रंगोली के डिजाइन हैं उसके अंदर, 50 प्रकार के मनोरंजन के साथ में भक्ति में कैसे जुड़ जाए, इसके अनुभव क्या कहते हैं उसको, अनोखे मार्ग है उसके अंदर। हाँ, तो मैं आपको जरूर विनती करूंगा, इसलिए कि मैं हरिकृष्ण टीवी पे बोल रहा हूँ इसलिए, लेकिन मेरा ये अनुभव रहा है कि मेरा भी बहुत सारा आध्यात्मिक पोषण हरे कृष्णा टीवी के माध्यम से हो रहा है, इसलिए पहले विनती तो मैं आपको करूंगा कि जरूर इसमें आप अपना दिनचर्या में आप उसको जोड़ दीजिए हरे कृष्णा टीवी को। और रही बात संदेश की, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, बहुत ही प्रयास के बाद, चक्र काटने के बाद प्राप्त होता है मनुष्य जीवन, ये भगवान की हमारे ऊपर सबसे बड़ी कृपा है, और मनुष्य जीवन की सर्वोच्च प्राप्ति है संतों का संग, और मनुष्य जीवन में ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है, बाकी जीवन में बहुत नामुमकिन जैसा ही है, मुश्किल तो है ही लेकिन नामुमकिन है, मनुष्य जीवन का यंत्र जो भगवान ने दिया है वो भगवान की प्राप्ति के लिए बहुत ही अनुकूल है, और ये जीवन को प्राप्त करके अगर हम जानवरों को जो कार्य करने की सुविधा दी गई है उसी को अच्छी तरह से और करेंगे तो ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य होगा, ये अच्छी सुविधाओं का उपयोग हम भगवान की प्राप्ति के लिए करें, और ये निश्चय करें कि इसी जन्म के अंत में भगवान की प्राप्ति करनी है, दोबारा मनुष्य का जन्म भी लेने के लिए दोबारा लौट के नहीं आना है, ये मेरे आपको नम्र विनती है, डोंट टेक अ चांस अगेन, इसी जीवन को पूरी तरह से केंद्रीभूत होकर इसी जीवन के अंत में भगवान की प्राप्ति होनी ही है, ये आपको अभी निश्चय करना होगा, और आपने निश्चय किया तो भगवान आपका सहारा है, वो आपको आश्रय देंगे और आपके निश्चय को पूरा करेंगे, लेकिन इस जीवन के एक क्षण को भी व्यर्थ मत करना, ये जीवन कहते ना ये जिंदगी ना मिले दोबारा, सच है, वो फिल्मी गाना नहीं है, सच है, भोग लेने के लिए नहीं, भगवान की प्राप्ति के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलेगा आपको ये, इसलिए मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अगर भगवान ने आपको बड़ी कृपा से मनुष्य का जन्म दिया है, इसी जीवन में उनको प्राप्त करने के लिए अपना जीवन समर्पित कीजिए, चाहे आप डॉक्टर हो, बिजनेसमैन हो, या अनपढ़ हो या पढ़े लिखे हो, जवान हो या बुजुर्ग हो, सुंदर हो या कुरूप हो, यही जीवन है, ये मिलेगा नहीं दोबारा, इसका उपयोग कीजिए और भगवान की प्राप्ति कीजिए। हरे कृष्णा।
थैंक यू सो मच विश्वदास जी, आज आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपने इतनी अच्छी तरीके से हमें भक्ति की गहराई बताई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। हरे कृष्णा।
सबको मेरा हार्दिक धन्यवाद है।